मेरे पास कलाम की चंद आयात लिखी हुई है जिनमें से मैं आपके सामने बात करूंगा, और मैं भरोसा रखता हूं कि खुदा हमारी इन कमजोर कोशिशों को बरकत देगा। अब बहुत से लोग हैरत ज़दा हैं कि हम क्यों शोर करने वाले और मुख्तलिफ हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये एक मुख्तलिफ किस्म की कन्वेंशन है उनसे जिनको लोग देखने के आदी हो चुके हैं, और अमूमन हर एक चीज कांट छांट की एक शक्ल में है। लेकिन जब हम इन इबादत में आते हैं जो कि मेरे लिए एक इम्तियाजी हक है, अब इसका आगाज उन्होंने कई साल पहले किया था, हम मुश्किल से भी जान नहीं पाते कि हम क्या करने वाले हैं। हम सिर्फ आते हैं और खुद को हवाले करते हैं, सिर्फ यही चीज है जिसे हम करना जानते हैं, और बाकी सब कुछ खुदा करता है ताकि हमें बहुत खास काम करने वाले लोग बनाए। किसी दिन किसी ने कहा, आप जानते हैं आप लोग वाकई एक अजीब सी चीज है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में हम हैं। और मुझे याद है उन इबादत में एक दफा बाई ट्राय मुझे एक छोटे जर्मन के मुतालिक बता रहे थे जिसने बताया कि उसने रुलकुस का बपतिस्मा पाया था, और उसके अगले ही दिन उस दुकान में जहां वो काम कर रहा था उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर खुदावंद की तारीफ करने लगा और बड़े जोश में गैर जुबानें बोलने लगा और बोलता ही गया। आखिरकार बॉस उसके करीब आया और कहा, हैनी आपके साथ क्या मसला है? उसने कहा, ओ मैं निजात पा गया हूँ। उसने कहा, मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। उसने कहा, ठीक है, तुम जरूर उन नटों के ग्रोह में गए होगे। उसने कहा, जी हाँ, खुदा के नाम को जलाल मिले, और कहा, उन नटों के लिए खुदावंद का शुक्र हो। उसने कहा, आप एक गाड़ी लें और सड़क पर चले जाएं, और कहा, आप उसमें से सारे नट निकाल दें तो बाकी लोहे की डंडियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बस यही बात है, और आप जानते हैं तकरीबन यही बात ठीक है। एक दिन मैं कैलिफोर्निया में लॉस एंजलस की सड़क की तरफ जा रहा था, और वहीं पर मैंने एक शख्स को उसके सीने पर निशान के साथ देखा, और उसने लिखा था, मैं मसीह के लिए बेवकूफ हूँ, और हर कोई उसे देखे जा रहा था। उसके करीब से गुजरने के बाद मैंने पीछे मुड़कर उन लोगों को गौर से देखा, और मैंने सोचा कि मैं इन बाकी लोगों के साथ पीछे चलूंगा, और चलता गया, और अपने पीछे उस शख्स ने लिखा था, तुम किसके लिए बेवकूफ हो? जी हाँ, मेरे ख्याल में हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप ये जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं दुनिया ऐसी रीत में फंसी हुई है, जब तक कोई मुख्तलिफ चीज इसे फर्क ना बनाए उस वक्त तक कि लोग इसमें कोई खराबी ख्याल करें। और अमूमन खुदा को कोई अजीब काम करना होता है कि लोगों को दोबारा वापस बाइबल में लाए। मैं ये ख्याल कर सकता हूँ कि नूह एक किस्म का नट था उस साइंसी दौर के लिए जिसमें वो रहता था, क्योंकि वो साबित कर सकते थे कि आसमानों में पानी नहीं है। लेकिन खुदावर ने फरमाया वहाँ कुछ होगा, बस नू ने मनादी करते हुए और ये यकीन रखते हुए कहा था, इसलिए वो एक नट बन गया था। मैं ये ख्याल करूँगा कि जब मूसा मिस्र में गया तो वो एक किस्म का फराउन के सामने नट था, लेकिन याद रखें फराउन भी उसके सामने एक नट था। बस हम ये महसूस करते हैं, यीशु भी विद्वती ख्याल किया जाता था, ये ठीक है, मार्टिन लूथर भी कैथोलिक कलीसिया के लिए एक नट था, और जॉन वेस्ली भी एंग्लिकन के लिए एक नट था। बस आप जानते हैं तकरीबन यही वक्त अब दूसरे नटों के लिए है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? लेकिन इससे कबल कोई नट हो, आपको मालूम है पहले एक बोल्ट होना चाहिए जिसकी चूड़ी से चूड़ी मिलती हो। लिहाजा आप जानते हैं नू एक नट होते हुए वो अगर एक नट को लें तो वो बोल्ट को अपनी तरफ खींचता है और एक साथ ही खींचकर पकड़ लेता है। बस एक नट होते हुए नू इस काबिल था कि उन सब ईमानदारों को सजा में से खींचकर कश्ती में ले आए। हम जानते हैं कि मूसा ने कलीसिया को मिस्र से बाहर एक नट की हैसियत से निकाला, ये दुरुस्त है। मेरे ख्याल में अब हमें एक और नट की जरूरत है कि दुल्हन को कलीसिया से बाहर खींचकर निकाले। हमें अभी किसी एक दूसरे शख्स की जरूरत है। बस हम बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, और मैंने सोचा आज रात अगर खुदावंद की मर्जी यही है तो मैं कुछ कलाम मुकद्दस की आयात पढ़ने की कोशिश करूंगा जो इसके बारे में है, और आपसे चंद लम्हे बात करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इतने मुख्तलिफ लोग हैं। आइए अब हम कलाम की तरफ चलें। फिलिपियों 2:1-8 और दूसरा करिन्थियों 3:6 आइए हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम खुदा के कलाम पर यकीन रखते हैं। और अब आइए पढ़ने से पहले हम दुआ के लिए सर झुकाएं। पुर फजल आसमानी बाप, बेशक आज रात हम खास लोग हैं इस दौर में रहने वाले उन कामों को देखकर जिन्हें हम होते हुए देख रहे हैं, ये जानकर कि वक्त करीब है जब यीशु अपनी कलीसिया के लिए आएगा। हो यही तो है जो हमारे दिलों को जोश दिलाता है खुदावंद। और जैसे ही हम सफात को वापस पलटते हैं, आज रात हम दुआ करते हैं कि तू हमें कलाम में से एक सिलसिला बयान दे और रूल कुछ हमारे दिलों में ऐसी बातें जाहिर करे जो के खुदा के नजदीक नेकी और खुशी करने वाली हों। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको मालूम है, यकीन करें, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ करें। मैं अमूमन कुछ अजीब बातें पूछता हूं और मुझे उम्मीद है मैं कोई बहुत अजीब बात नहीं पूछूंगा। लेकिन जब हम फर्माबरदारी का अहद झंडे से करते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं और झंडा करीब से गुजरता है, हम खड़े हो जाते हैं जो कि हमें करना चाहिए और हम सलामी देने को खड़े हो जाते हैं। तो आए जब कि हम कलाम पढ़ते हैं तो हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं। दूसरा करिन्थियों 3:6, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला ना होगा? क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल इस बे इंतहा जलाल के सबब से बे जलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कसीफ हो गए क्योंकि आज तक पुराने अहदनामा को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, ना के और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आजादी है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह जाहिर होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। और फिलिप्पियों 2 में हम ये पढ़ते हैं, पहली आयत से शुरू करते हुए और 8वीं आयत तक, अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली दर्द मंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफिरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ न करो बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाइबे हो गया और इंसानी बदन में जाहिर होकर अपने आप को बहुत पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, ये अजीम कलाम जो आज रात पढ़ा गया है, तेरी पाक तहरीर, इसे हमारे दिल पर बहुत हकीकी बना दे कि जब हम यहाँ से जाएं, तो उन अमाउस से जाने वालों की मानित कहते हुए जाएं, क्या हमारे दिल हमारे अंदर जोश से नहीं भर गए थे जब वो राह के किनारे हमसे बातें कर रहा था। हम यीशु के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं।
Now, this is a very odd text.
अब ये बहुत मुख्तलिफ कलाम है, लेकिन मेरे ख्याल में मौके की मुनासबत से ये बड़ा खास है। मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, कादरे मुतलिक खुदा हम पर आश्कारा हो गया। अब जब से ये इंसान बना है और इंसान के दिल में ये जानने की भूख है कि ये कहाँ से आया और इसके यहाँ मौजूद होने का सबब क्या है और ये कहाँ जा रहा है। सिर्फ एक ही है जो इसका जवाब दे सकता है, एक वही है जो इसे यहाँ लेकर आया। और आदमी शुरू ही से खुदा को देखना चाहता है। पीछे पुराने ऐदनामा में हमें मालूम होता है कि खुदा ने अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाए रखा और खुदा का लोगों से बर्ताव का बहुत ही अजीब सा तरीका है। वो अपने आप को गैर ईमानदारों से छुपाता है और खुद को ईमानदारों पर जाहिर करता है। खुदा ऐसा करता है। यीशु ने बाप का शुक्रिया अदा किया कि उसने ये बातें अकलमंदों और दानों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर कर दी। बस हमें मालूम है कि खुदा अपनी फितरत को कभी नहीं बदलता और वो हमेशा बिल्कुल इसी तरह अपना काम करता रहता है। हम जानते हैं मलाकी 3 में उसने फरमाया, मैं ही खुदा हूँ और मैं ला तब्दील हूँ। लिहाजा वो हमेशा ही से बिल्कुल इसी असूल पर काम करता है। अब हम बाइबल की बहुत सी पुरानी किताबों में से एक को लेते हैं। जब अय्यूब अपने वक्त के सबसे ज्यादा रास्तबाज आदमियों में से एक कामिल आदमी, खुदा के कवानीन के मुताबिक एक मुहज्जब खादम, इज्जतदार खादम था, जबकि खुदा ने फरमाया उसकी मानित जमीन पर कोई दूसरा नहीं था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि एक मर्तबा खुदा को देखे। उसको पता था कि खुदा है और उसने महसूस किया कि वो उसे देख लेगा, या दूसरी सूरत में उसके घर जाऊं और दरवाजे पर दस्तक दूं और कहूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बैठ जाऊं, उसके साथ बात करूं, जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं। हमारे पास एक समझ है, इसलिए हम इन इबादत में यहाँ हम इकट्ठे होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। इसी तरह जब हम एक दूसरे के साथ चीजों पर गुफ्तगू करते हैं और खादम ऐसा करते हैं, जिंदगी के हर कदम पर लोग ऐसा ही करते हैं, वो चीजों पर गुफ्तगू करते हैं। और अय्यूब का खुदा उसके साथ बड़ा सच्चा था। वो मालूम करना चाहता था अगर वो उसके दरवाजे पर दस्तक देने ना जा सका तो भी वो चाहता था कि उससे गुफ्तगू करे। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा उससे हम कलाम हुआ, लेकिन उसने अपना आप छुपाया, उसने बगोला की शक्ल में अपना आप छुपाया और उसने अय्यूब को कहा कि अपनी कमर कस ले। वो उससे एक आदमी की तरह कलाम करने वाला था और वो एक बगोले में नीचे आ गया और अय्यूब से हम कलाम हुआ और वो बगोले में से अय्यूब पर जाहिर हुआ, फिर भी उसने बिल्कुल ठीक उसको ना देखा। वो सिर्फ हवा को दरख्तों में इधर उधर चलते ही सुन सका और आवाज बगोले में से होकर आई, लेकिन खुदा बगोले में छुपा हुआ था। हम जानते हैं यहाँ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका में उन्होंने लफ्ज अमोया इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है एक अनदेखी ताकत, और ये अनदेखी ताकत बगोले के अंदर एक सुनी जाने वाली आवाज थी। उसने अय्यूब से कलाम किया, तब भी अय्यूब ने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसने अपना आप बगोले में छुपाए रखा। हमें बाइबल में अजीम नबियों में से एक के बारे में मालूम होता है, यानी मूसा। पुराने ऐदनामे में खुदा के मखसूस किए गए, चुने हुए और मुकरर किए गए खादमों में से एक था। उसने भी खुदा को देखने की तमन्ना की, वो उसके बहुत करीब था और उसने बहुत सारे अजीब काम उसकी कुदरत वाले हाथ से अपने सामने देखे थे, जो कि सिर्फ खुदा ही कर सकता था। उसने उसको एक दिन देखने की आरजू की और खुदा ने उसको बताया, जा चट्टान पर खड़ा हो जा। और चट्टान पर खड़े हुए मूसा ने उसे गुजरते हुए देखा, उसने उसकी पुश्त को देखा, और उसने कहा ये तो एक आदमी की मानित दिखाई दिया, जैसे एक आदमी की पुश्त। तब भी उसने खुदा को नहीं देखा, सिर्फ उसने खुदा का पर्दा देखा। बाइबल फरमाती है इंसान ने कभी खुदा को नहीं देखा, लेकिन बाप का इकलौता बेटा उसी ने जाहिर किया। लिहाजा मूसा ने उसको एक आदमी के तौर पर पर्दे में देखा। हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे का यहोवा नए अहदनामे का यीशु है। और डॉक्टर स्कोफील्ड यहाँ हैं। हम उसके कलाम में पाते हैं कि उसका कलाम शक्ल बदलता है। हमें यूनानी में इन मोर्फा मिलता है, जिसका मतलब है पोशीदा जाहिर किया गया। जो कुछ नजर नहीं आ सकता हम जानते हैं वो यहाँ है। ये हो सकता है नहीं भी देखा जा सकता, लेकिन फिर भी हम जानते हैं वो मौजूद है। और जब उसने अपनी शक्ल बदली इन मोर्फा से, जिसका मतलब है कि उसने माफूकुल फितरत से फितरी शक्ल इख्तियार कर ली और उसने अपना रूप दीगर सूरत में तब्दील किया। ये ड्रामे या खेल की तरह है। वो किरदार अदा कर रहा था, और यूनानी में जब वो अपने चेहरे बदलते हैं तो हो सकता है एक ही खेल में शायद एक ही अदाकार ने कई मुख्तलिफ हिस्सों में अदाकारी की हो। और मेरी बेटी यहाँ पर मौजूद है। अभी उन्होंने हाई स्कूल में एक ड्रामा किया था, और वो एक लड़का जिसे मैं जानता हूँ, तकरीबन उसने 4 किरदार अदा किए। वो स्टेज के पीछे जाता और बाहर आने की गर्ज से अपना रूप तब्दील करता, इसी तरह दूसरे किरदार का रूप धार लेता। अब अगर आप पुराने ऐहदनामे की पेशनगोइयों को लेंगे कि मसीहा को कैसा होना था, तो आप उसका मुवाजना यीशु की जिंदगी से करें तो आप बिल्कुल ठीक समझ जाएंगे कि यीशु को कैसा होना था। और वो एक मामूली आदमी नहीं था, वो अनदेखा खुदा था। उसने अपनी सूरत को एक माफूकुल फितरत सूरत से एक फितरती इंसान की सूरत में तब्दील किया। तब भी वो खुदा ही था, लेकिन बदनी खाल में होते हुए तब भी वो इंसान से छुपा हुआ था। और आप पुराने ऐहदनामे पर गौर करें। मैं जानता हूं कि मैं आज रात मिली जुली भीड़ से मुखातिब हो रहा हूं, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखती है। और हम यहां हैं ताकि जानें हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब का क्या मतलब है। और हम जानते हैं कि यहाँ अगर आप यहूदी मर्द और औरतें और यहूदी उस्ताद जो हैकल में अंदर होते थे उन पर गौर करें, तो गुजरे दिनों में अगर उन्होंने बाइबल पर गौर किया होता कि वो पेशगोइयां बजाय रसूमात के थी, तो वो पहचान जाते कि यीशु कौन था। तो उन्होंने उसे कभी भी बाल जबूब नहीं कहना था, तो वो उसे कभी भी मसलूब ना करते। लेकिन ये सब अदा होना था, ये खेल का हिस्सा था, और वो इस मामले में अंधे थे। ये इसी तरह है जैसे आप में से बहुत से मर्दों खवातीन आज रात यहाँ हैं। हो सकता है मेरे हम उम्र हों या मुझसे थोड़े से ज्यादा उम्र के। आपको याद होगा यहाँ अमेरिका में कई साल पहले इससे कबल के चीनी लोग आए। मेरा भाई जिसका अभी तारुफ कराया गया, वो मेरे जहन में आ गया है जब मैं उससे बात कर रहा था किस तरह वो चीनी लोग किया करते थे। वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और वो धोबी काट चलाते थे। अगर आप अपने कपड़ों को धुलाने और इस्त्री कराने के लिए उस धोबी काट में जाएं, तो वो चीनी धोबी काट के लोग एक रसीद लेंगे और एक खास तरीके से उसे फाड़ेंगे। आप रसीद का एक सिरा लेंगे और दूसरा वो लेंगे। लेकिन जब आप वापिस आते हैं और अपनी चीजों का दावा करते हैं, तो कागज के वो दो टुकड़े जिन्हें फाड़ा गया था, अगर वो दो टुकड़े आपस में बिल्कुल ठीक तौर पर नहीं मिलते, तो आप उनको किसी तौर पर भी धोखा नहीं दे सकते थे। सबब ये कि उनके पास एक हिस्सा था और आपके पास दूसरा। और अगर ये जाली होता तब आपके पास हक था कि आप अपने वाले का दावा करते, तब आप हकदार हैं कि वो आप ही का है, जबकि आपके पास मुआयदे का दूसरा हिस्सा मौजूद था। बस ऐसा ही है आज रात, जबकि हमें मुआयदा का दूसरा हिस्सा मिल गया। जब खुदा ने अपने बेटे को कलवरी पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिस्म को ऊपर उठाए हुए कुर्बानी के लिए और रुलकुस को नीचे हमारे पास भेजा, जो कि कभी एक इंसान यीशु में रहता था। बिल्कुल वही खुदा आज रात रुलकुस की सूरत में पोशीदा है। उन दो टुकड़ों को यकजा होना है, फिर आप मुआयदे के हकदार हैं। खुदा ने ऐसा ही किया कि इंसान के सामने पूरी तरह जाहिर हो जाए, जबकि उसने खुद को इंसान बना दिया। मैं कुछ साल कबल एक कहानी पढ़ रहा था और इस कहानी में ये बताया गया एक अजीम आली जरफ बादशाह, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मैं कहानी सुनाने के मुतल्लिक नहीं सोच रहा था, शायद ये अफसाना है, लेकिन ये हमें उस नुक्ते की तरफ ले जाता है जो हमें एक पस्से मंजर देता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। वो बादशाह, वो एक ऐसा आली जर्फ बादशाह था और वो अपनी रियाया से इतना प्यार करने वाला था, जबकि एक दिन उसने अपने मुहाफिज और रियाया के सामने उसने कहा, आज तुम आखिरी मर्तबा मुझे देखते हो, फिर कभी मुझे कई सालों तक ना देखोगे। उसके मुहाफ़िज़ों और उसके उमरा ने उससे कहा, आलीजा आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्या आप कहीं एक परदेसी बनने के लिए परदेश जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मैं यहीं ठहर रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने लोगों के दरमियान, मैं एक देहाती बनने जा रहा हूँ, मैं कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि जमीन में खेती बाड़ी करने वालों के साथ मेहनत करूँ, मैं जा रहा हूँ कि जमीन की खुदाई करने वाला बनूँ, मैं अंगूर के दरख्त की कांट छांट करने जा रहा हूँ उनके साथ जो अंगूर के दरख्तों को छांटते हैं, मैं उनमें से एक बनने जा रहा हूँ ताकि बेहतर मालूमात हासिल करूं कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं जाती तौर पर उनके साथ रहकर ज्यादा आगाही हासिल करना चाहता हूं। वो मुझे नहीं जानेंगे, लेकिन तब भी मैं यूं ही आगाही हासिल करना चाहता हूं। और अगली ही सुबह जब उसके नुमाइंदों और उसके लोगों ने उसे देखा कि एक शख्स जो के महल में था अपना ताज उतारता है और उसे नीचे रखता है, यानी तख्त पर अपने शाही चोगा को उतारता है और एक देहाती के कपड़े पहनकर आम लोगों के दरमियान चला जाता है। अब इसी तरह इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है, और फिर हम खुदा के मुतल्लक भी ऐसा ही पाते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम आपको चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ही बादशाह रहें। लेकिन वो उनमें से एक बनना चाहता था ताकि उनको बेहतर तौर पर जाने और वो भी उसे बेहतर तौर पर जान लें कि असल में वो क्या था, ये उन पर जाहिर हो जाए कि वो हकीकत में क्या था। और ऐसा ही खुदा ने किया, उसने अपने आप को यहोवा खुदा से तब्दील कर दिया ताकि हम में से एक बने, कि वो दुख उठाए और मौत का मजा चखे, वो जान सके कि मौत का डंक कैसा था और मौत की सजा अपने ऊपर ले ली। उसने अपने ही ताज और चोगा को एक तरफ रख दिया और हम में से एक बन गया। उसने छोटा बनकर आजजी के साथ पांव धोए, वो खेमों में गरीब गुरबा के साथ रहा, वो जंगलों और गलियों में उनके साथ सोया जो कमतर थे, वो हम में से एक बन गया ताकि हमें वो बेहतर तौर पर समझ सके और हम भी उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। अब मेरे ख्याल में उसी में हम उसकी खुद की तब्दीली को पाते हैं जो उसने की। अगर आप गौर करें तो वो तीन बेटों के नाम से आया, वो इब्ने आदम के नाम से, इब्ने खुदा के नाम से और इब्ने दाऊद के नाम से आया। अब जैसा कि वो इब्ने आदम के तौर पर, तो हिजकियल 2:3 में खुद यहोवा हिजकियल नबी को इब्ने आदम यानी ए आदम जात पुकारता है। इब्ने आदम का मतलब है नबी। उसने इसी तरह से आना था अस्तिश्ना 18:15 को पूरा करने, जिसके मुतालिक मूसा ने कहा था, खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे ही दरमियान से नबी बरपा करेगा जो मेरी मानिंद होगा। उसने कभी भी खुद को खुदा का बेटा नहीं कहा, उसने खुद को इब्ने आदम का हवाला देकर ही मुखातिब किया, क्योंकि उसे कलाम के मुताबिक ही आना था। देखें, उसे उन कागज के दो फटे हुए टुकड़ों को यकजा करना था, जैसे कि पुराने अहदनामे की नबुवत और उसका अपना करदार, वो बिल्कुल ठीक एक जैसे बन जाएं। लिहाजा वो इब्ने आदम की सूरत में आया। फिर हम जानते हैं उसकी मौत, दफन होने और जी उठने के बाद वो पेंतिकोस के दिन पर खुदा के बेटे के तौर पर आया, खुदा यानी रूल कुछ की सूरत में। वो क्या कर रहा था? अपने लोगों पर खुद को मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर करते हुए वो खुद को तब्दील कर रहा था। रूल कुस जो कि खुदा है, वो आया कि खुदा के बेटे की हैसियत से कलीसियाई अदवार में काम करे, जो कि रूल कुस है। लेकिन हजार साल बादशाहत में वो इब्ने दाऊद की हैसियत से दाऊद बादशाह के तख्त पर बैठने को आता है। उसे दाऊद का तख्त लेना ही है। वो अब बाप के तख्त पर है। और फिर उसने कहा, वो जो गालिब आए वो मेरे साथ तख्त पर बैठेगा, जैसे कि मैं गालिब आया हूँ और अपने बाप के तख्त पर बैठा हूँ। बस वो हजार साल बादशाहत में इब्ने दाऊद होगा। ये क्या है? ये वही खुदा है जो हमेशा ही बस अपना चेहरा तब्दील करता है। मैं अपनी बीवी के लिए एक शोहर हूँ। क्या आपने गौर किया? सूरफनीकी औरत ने कहा, ए इब्ने दाऊद रहम फरमा। उसने उस पर बिल्कुल तवज्जो न दी। उसको कोई हक नहीं था कि वो उसे यूं बुलाए। उसका उसको इब्ने दाऊद कहने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वो यहूदियों के लिए इब्ने दाऊद था। लेकिन जब उसने उसको खुदावंद कहा, वो उसका खुदावंद था, तब उसे मिल गया जो उसने मांगा था। अब जैसे कि वो खुद को तब्दील कर रहा था। अब मैं अपने घर में तीन मुख्तलिफ लोगों की तरह हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी मुझ पर शोहर होने का दावा करती है, जबकि मेरी बेटी ऐसा नहीं करती। वो मुझ पर शोहर होने का दावा नहीं करती, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ और मेरा छोटा पोता भी है, क्योंकि मैं उसका दादा हूँ। लिहाजा उसका कोई हक नहीं कि मुझे बाप कहे। मैं उसका बाप नहीं हूँ, मेरा बेटा उसका बाप है, मैं तो उसका दादा हूँ। लेकिन तब भी मैं एक ही शख्स हूँ। और खुदा वो क्या करता है? वो सिर्फ खुद को बदलता है कि वो उस नस्ल का बन जाए, ताकि खुद को लोगों पर जाहिर करे। और यही है जो हमें यहाँ आज रात मालूम करना है कि खुदा इस वक्त किस तौर पर ख्याल करता है कि मैं खुद को लोगों पर जाहिर करूँ। उसने अपना चेहरा तब्दील किया, वो अपना किरदार बदलता है, लेकिन वो अपना मजाज नहीं बदलता। वो अपनी तबीयत या मजाज नहीं बदलता। वो एक शख्स से दूसरे में सिर्फ अपना चेहरा बदलता है। वो अपने आप को लोगों पर ज्यादा साफ जाहिर करने को ऐसा करता है, ताकि वो ये जान सकें कि वो कौन था और वो क्या है। हम अब्रानियों एक में पढ़ते हैं, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे अपने बेटे यीशु की मार्फत कलाम किया। अब नबियों के बारे में यीशु ने कहा था, जब वो यहाँ जमीन पर था, कि वो खुदा हैं। तुम कहते हो जिन नबियों के पास खुदा का कलाम आया वो खुदा थे, और कलाम की आयात को तब्दील नहीं किया जा सकता। उसने ऐसा ही कहा था। कहा, आप उसे कैसे मुजरिम ठहरा सकते हैं, जबकि वो खुदा का बेटा है। देखें, खुदा का कलाम हर दौर में हालात बताने वाला रहा है कि क्या होने वाला है, और यीशु ही उन तमाम पेशनगोइयों की तकमील था, और अलुहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। सारी मामूरी उसी में थी। यूसुफ में वही था, एलिया में भी वही था, मूसा में भी वही था, बिल्कुल वही दाऊद में भी था, जो कि एक रद्द किया गया बादशाह था। एक बादशाह के तौर पर उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया था, और जैसे ही वो सहन से बाहर गया, एक छोटा सा तकलीफ देने वाला शख्स चलते हुए उसकी तरफ आया, जो उसकी बादशाहत और उसके निजाम को पसंद नहीं करता था, और उसने उस पर थूका, और मुहाफिज ने अपनी तलवार खींची और कहा, क्या मैं इस कुत्ते का सर कलम कर दूं जो मेरे बादशाह पर थूक रहा है? और हो सकता है दाऊद ये महसूस ना कर रहा हो कि उस वक्त वो क्या कर रहा था, लेकिन वो मसा शुदा था। और उसने कहा, इसे छोड़ दो, खुदा ने उसे बताया कि ऐसा कर। एक रद्द किए बादशाह की तरह वो पहाड़ी पर चढ़ गया और यरूशलम पर रोया। क्या आपने गौर किया? फिर चंद सौ साल बाद इब्ने दाऊद पर थूका गया, उन्हीं गलियों में और पहाड़ी पर उसी पहाड़ से एक रथ किए गए बादशाह की तरह यरूशलेम पर निगाह की और पुकार उठा, ऐ यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुझे अपने परों तले छुपा लूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपाती है, लेकिन तूने ना चाहा। उसने फिर भी अपनी फितरत को ना बदला। सबब अब्रानियों 13:8, वो कल और आज बल्कि अब तक यक्षा है। खुदा जिसमें जाहिर हुआ ताकि मरे और हमें गुनाह से मखलसी दे, इसलिए उसने खुद को तब्दील किया कि एक इंसान बने। हम देखते हैं मुकद्दस योहन्ना 12:20 में यूनानियों ने उसे मुनादी करते सुना था। अब कोई शख्स भी उसकी उस वक्त तक नहीं सुन सकता जब तक उसका दिल उसे देखने को बेचैन ना हो, जैसे अय्यूब और पिछले जमाने के नबी, वो सब उसे देखना चाहते थे। बस ये यूनानी उससे मिलने को आए। वो फिलिप्पस के पास आए जो बैतसैदा से था और कहा, जनाब, हम यीशु को मिलना चाहते हैं। यूनानी उसे देखना चाहते थे लेकिन वो इस काबिल ना थे कि उसे देखें, क्योंकि वो अपनी इंसानी हैकल में था। खुदा ने मसीह में होकर खुद दुनिया से मेल मिलाप कर लिया। अब हम जानते हैं कि उस हालत में यूनानी उसे देख ना सके, और गौर करें, बिल्कुल वही अल्फाज जिसका यीशु ने उनके सामने इजहार किया। उसने फरमाया, जब तक गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तो वो अकेला ही रहता है। दूसरे लफ्जों में वो उसे फिर बाद में उस तब्दीली चेहरा में कभी ना देखेंगे, क्योंकि वो इंसानी बदन के पर्दा में था। लेकिन जब ये गंदम का दाना जमीन में गिरा, फिर उसने उन तमाम नस्लों को जन्म दिया। बेशक वो उस वक्त तक यहूदियों के पास भेजा गया था, लेकिन उस गंदम के दाने को जमीन में गिरना जरूरी था। पोशीदा खुदा का इंसानी जिस्म में होकर, जो कि गैर ईमानदारों से छुपा हुआ था, लेकिन वो ईमानदारों पर जाहिर हो गया। यूहन्ना 1 इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब इब्तदा में कलाम था, कलाम एक सोच का इजहार है। यहाँ तक के इब्तदा में वो खुदा भी नहीं था। अब आज हमारी अंग्रेजी का लफ्ज खुदा, जिसका मतलब है जिसकी प्रस्तिश की जाए, ये जहन को कितना उलझाता है। आप किसी शख्स को भी खुदा बना सकते हैं, आप किसी चीज को भी खुदा बना सकते हैं, लेकिन पुराने ऐदनामे में पदेश 1 में इब्तदा में खुदा के लिए लफ्ज एलोहिम इस्तेमाल हुआ है। एलोहिम का मतलब है खुद वजूद रखने वाला। कितना फर्क है लफ्ज एलोहिम में और लफ्ज खुदा में। एलोहिम का मतलब है खुद वजूद रखने वाला। हम खुद से वजूद नहीं रख सकते, हम कादरे मुतलिक नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा इख्तियार वाले नहीं हो सकते, हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, सब कुछ जानने वाले नहीं हो सकते। जो एलोहिम इन सब का इजहार करता है, हम वो नहीं हो सकते। वो दरख्त जिसमें से आप खुदा बनाते हैं, या वो इमारत, ये खुद वजूद में नहीं आती। बस इब्तदा में खुदा था, जो के अब्दी जिंदगी थी, उसमें सफात थी, और सफात कलाम बन गई और कलाम मुजस्सम हुआ। यीशु फिदिया देने वाला है, और फिदिया का मतलब है वापिस लाना। अगर उसे इसे वापिस ही लाना है तो इसे कहीं और होना पड़ता ताकि वापिस लाया जाए। बस आप देखते हैं कि तमाम लोग इस काबिल नहीं होंगे कि इसे देखें, क्योंकि तमाम लोग इब्तदा में खुदा की सोच में नहीं थे, समझे। काहिनों को देखें, जब उन्होंने देखा कि वो खुद को बिल्कुल कलाम के साथ बयान करता है जो कि वो था, उन्होंने कहा, ये बालजबूब है जिसने जाहिर कर दिया कि उनकी फितरत कहाँ से थी। ये उस जमाने की जदीद सोच थी। लेकिन जब उस कस्बी से वो फाटक पर मिला तो उसे अपना मसीहाना निशान बताया कि उस औरत ने क्या क्या किया था। इसलिए उस औरत ने कहा, जनाब, मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो हमें ये तमाम बातें बताएगा। वो उसे मसीह की हैसियत से पहचान रही थी कि वही मसीहशुदा है, क्योंकि वो कलाम की अहलियत पर पूरा उतरा था। क्या तुम नहीं देखते कि दो कागज के टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। वो कहती है, हम जानते हैं कि मसीहा जब आएगा। अब शायद खुदा ने ये और वो मिक्स किया एक कायल करने वाले की तरह, ताकि घंटी की खास आवाज निकले। लेकिन जब यीशु पीछे फिरा और फरमाया, मैं ही वो हूँ जो तुझसे बात करता हूँ, तो वहाँ कोई भी बालजबूब जैसा तासुर ना था। उसने अपना पानी का घड़ा वहीं छोड़ दिया, शहर की तरफ दौड़ गई और कहा, आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए जो मैंने किए थे। क्या ये बिल्कुल वही मसीहा नहीं? समझे? अब ये क्या हुआ? इस तजर्बे के साथ पिछले कलाम को शामिल करते हुए यही यीशु उसे बता रहा था उसने क्या किया और उसने उसे मसीह बना दिया। और क्या आपने गौर किया, जल्द ही उसके गुनाह माफ कर दिए गए क्योंकि शुरू में वो नजात या मखलसी के काबिल थी क्योंकि वो इब्तदा ही से खुदा की सोच में थी। बस यीशु ने उसे मखलसी दी या उसे वापस लाया जब उस औरत ने देखा कि यहोवा का मुजस्सम शुदा कलाम जाहिर हो गया है जो वो था और जो वो है। अब जब यीशु आया, अगर वो नूह के पैगाम के साथ आता तो ये काम नहीं करता, एक कश्ती बनाता और तैराता तो काम नहीं होना था। लेकिन नूह खुदा का एक हिस्सा था और उसने एक खास तरीके या अपने ही ढंग पर काम किया क्योंकि वो मखसूस था और उसका पैगाम अजीब था क्योंकि ये वही कलाम था जो मुजस्सम होने वाला था। वो मूसा के पैगाम के साथ नहीं आ सकता था क्योंकि उससे ये काम नहीं होना था। मूसा पर खुदा का एक हिस्सा जाहिर किया गया था, वो एक ऐसा कलाम था जिसका इजहार उस वक्त पर किया गया, लेकिन यीशु उस तरीके से नहीं आया। बाइबल में भी कभी ये नहीं फरमाया गया कि यीशु उस तरीके से आएगा, लेकिन जब वो आया उसने बिल्कुल ठीक इजहार किया जैसा कि उस अहदनामे में कहा गया था उसे इजहार करना होगा। तब वो तमाम जो नजात के काबिल थे उन्होंने उसका यकीन किया क्योंकि वो खुदा की सोच में थे। इब्तदा में उसकी जात की तमाम सफात मुजस्सम हुई और मखलसी देने वाला बना और वापिस खुदा के पास ले आया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जन बनने का हक बख्शा क्योंकि वो नजात पाने के काबिल थे, वो शुरू ही से सोच में थे। अगर हम एक लम्हा यहाँ रुकते हैं, अगर ये मुमकिन हो और इसके मुतल्लिक आज रात सोचते, उस वक्त के पैगाम के मुतल्लिक जो यहोवा के ख्यालात का इजहार था, बनाए आलम से पेश तक हमें बताया गया, हमारे नाम बरा की किताब हयात में शामिल कर दिए गए थे। फिर हम दो पहलू देख सकते हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्यों एक पहलू दूसरे वाले से फर्क है। इसे जरूर ही उस तरह का होना चाहिए, ये हमेशा ऐसा ही था, ये हमेशा ऐसा ही है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो कलाम था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अब खुदा पीछे पुराने अहदनामे के दिनों में हम जानते हैं कि वो अपने लोगों पर मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर हुआ। उसने अपने आप को पुरानी तुक्स की खाल के पीछे छुपाए रखा था। खुदा अपने रहम के तख्त पर तुक्स की खाल के पीछे छुपा हुआ था। हम जानते हैं कैसे सुलेमान ने जब उसने खुदावन की हैकल को मखसूस किया और यही तुक्स की खालें वहां लटक रही थी जो के पर्दा था, कैसे वो आग के सतून की हैसियत से अंदर दाखिल हुआ और बादल के तौर पर और वहां पीछे चला गया और खुद को दुनिया से बाहर पर्दे में छुपा लिया। लेकिन ईमान से इसराइली जानते थे कि वो वहाँ पीछे था, उन्हें मालूम था वो वही था। इससे कतई नजर कि कोई बेदीन दुनिया में से उसको कुछ कहता, वो गैर ईमानदारों से छुपा हुआ था। लेकिन ईमानदार ईमान से उसे जानते थे कि वो पीछे वही था, उन पर रहम हुआ था और वो अपने रहम के तख्त पर था जो कि एक बहुत बड़ा बेद था। आप जानते हैं पुराने अहदनामा में उस पर्दे के अंदर जाने में मौत थी, मगर अब इस पर्दे से बाहर रहने में मौत है। तब उस जलाल में दाखिल होने से मौत थी, मगर अब इस जलाल से बाहर रहने में मौत है। बेशक ये कलवरी पर पर्दा फटने की वजह से हुआ, ये पुराना पर्दा फट गया और अब उसकी हजूरी से दूर रहना मौत है, मगर तब उसकी हजूरी में रहना मौत थी। समझे? ये तब्दीली आगे और पीछे की है और जरूर है कि आप कलाम में से तलाश करें ये समझते हुए कि हम किस दिन में रह रहे हैं। अब कलवरी पर पर्दा दो हिस्सों में फट गया, तब रहम का तख्त साफ नजर आने लगा। लेकिन क्या हुआ था? खून में लथपथ ये कलवरी पर लटक रहा था। जैसे ही वो साल बा साल खून लेते थे, पाक तरीन मकाम को धोते और रहम के तख्त पर छिड़काव करते, वहीं पर खुदा ने अपनी जोरदार ताकतवर बिजली की गर्ज के साथ ऊपर से नीचे तक तुक्स की खाल के पर्दा को फाड़ दिया और रहम का तख्त वाजे तौर पर नजर आने लगा। बिल्कुल हकीकी खुदा का बरा कलूरी पर साफ तौर पर लटक रहा था। असल रहम का तख्त जब खुदा ने खुद से कीमत चुका दी और हम में से एक बन गया और खुद को एक इंसान के तौर पर जाहिर कर दिया हमारे साथ वाकफियत रखने को, ताकि हम उससे वाकिफ हो जाएं। कुफारे के उस दिन तमाम बनी इसराइल पर रहम का तख्त पूरी तरह वाज़े था, लेकिन अफसोस उन दिनों कलीसियाई बुजुर्गों की रस्मों पर, उन्हीं रस्मों की बिना पर लोगों ने असल रहम के तख्त पर पर्दा डाला हुआ था। अगर उन्हें कलाम का इल्म होता तो हर एक टुकड़ा उस चीनी टुकड़े की तरह वापस आ जाता। पुराने ऐदनामे की पेशनगोई को पूरा होना ही था, ये ऐसा ही था। और अगर उन्हें कलाम सिखा दिया गया होता तो वो रहम का तख्त भी देख लेते, जैसा कि मूसा ने कहा उसी दिन से वो पर्दा में हैं, ये अभी तक उनके दिलों पर है, वो इसे नहीं देख सकते। लेकिन वो फिदिया देने वाला और दुख सहने वाला खुदा था, वो एक असल हकीकी रहम का तख्त था जो एक भरपूर मंजर में साफ था, जैसे हमने गीत गाया, देखो उस पर निगाह करो जो वाजे है, वो एक ताकतवर फाते है। जब से उसने पर्दे को दो टुकड़ों में फाड़ा, देखो वो रहम का तख्त आ गया, जमात में साफ तौर पर लटक रहा है, लेकिन उन्हें एक वाज़े राय के मुतायत होना है। अब ख़वातीनों हज़रात और इस कन्वेंशन के नुमाइंदगान, मैं कतई नज़र किसी शख्स से आपसे ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आज के नुक्ता नज़र में, इस नुक्ता नज़र में जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं, मैं बुजुर्गों की रस्मों से डरता हूँ, यानी कलीसियाई बुजुर्गों से जिन्होंने बहुत से लोगों से उसे छुपाए रखा। जब से पाक रूह इन आखिरी याम में आया है, जैसा कि नबुवत की गई थी, और पर्दा चाक हो गया है, बहुत से लोगों की कोशिश है कि अपने बुजुर्गों की रसूमात को लटका दें, और इसीलिए वो इतनी बड़ी खुशी और सलामती को देख नहीं सकते, और वो काम जो कलीसिया के पास आज हैं, ताहाल उनको वाजे तौर पर नजर आते हैं जो ईमान रखते हैं। उसने इस दिन के वादे के कलाम को छुपाए रखा। अब रसूमात ने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि मौजज़ात के दिन गुजर गए। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक अच्छा तहजीब याफ्ता शख्स ट्यूसान एरिजोना में, जहां मैं रहता हूं, मेरी रमादा में इबादत थी और हम बिजनेसमैन कन्वेंशन पर गुफ्तगू कर रहे थे, जहां खुदावन यीशु आ मौजूद हुआ और बड़े अजीम काम किए। और ये मसीही शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, कलीसिया का खादम नेक इंसान है, और उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप लोगों को रसूली दौर की मंसूबा बंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने कहा, जबकि रसूली दौर खत्म हो चुका है। मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, मुझे दिखाओ कलामे मुकद्दस में कब रसूली दौर खत्म हुआ। मैंने कहा, रसूली दौर का आगाज पेंतिकोस के दिन में हुआ और ये जारी है। पेंतिकोस के दिन पत्रस ने कहा, ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है, यहाँ तक कि जितनों को खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा, ये कब खत्म हुआ। और खुदा अब भी बुला रहा है और रसूली दौर अब तक रवा है। और बस इसी तरह से लोग बुजुर्गों की रसूमात से बहुत से लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं, जैसा कि तब था, और आप ये देखने में नाकाम रहे कि क्यों इतने ज्यादा लोग इस पर फख्र करने वाले और जोश से भरे हुए हैं। और ये इबादत गैर मामूली है और दूसरे लोगों के सामने ऐसी अजीब है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने वो सारी रुकावटें दूर कर दी, उन्होंने उन पर्दों को चाक कर दिया, खुदा की पाक हजूरी में दाखिल होकर जहां वो देखते हैं, ये इस वक्त का जाहिर शुदा वादा लोगों के सामने जाहिर कर दिया गया, वो देखते हैं जिसका खुदा ने वादा किया। यूएल 2:28 में उसने वादा किया कि इन आखिरी दिनों में हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। इन आखिरी दिनों में मेरे ख्याल में यूनानी लफ्ज केनोस, जिसका मतलब है उसने खुद को खाली कर दिया, ना कि उस तरह से जो हम कहेंगे जैसा कि कोई चीज किसी शख्स के अंदर थी और उसने खाली कर दिया, बल्कि उसने खुद को अंडेल दिया। उसने अपनी अनदेखी सूरत को बदल दिया। उसने उस सूरत से जो वो था, उसमें जो वो है, उसने कभी अपने मजाज को नहीं बदला, लेकिन पेंतिकोस के दिन पर उसने खुद को इब्ने आदम से इब्ने खुदा में बदल दिया। वो लोगों के साथ नहीं आया, बल्कि वो लोगों में आया, समझे? बिल्कुल वही खुदा इस अजीम दौर में अपनी खिदमत को जारी रखने के लिए। उसने बाइबल में पेशनगोई की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जो ना रात और ना दिन होगा, लेकिन शाम के वक्त में रोशनी होगी। अब सूरज जुग्राफियाई तौर से मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, हर दफा ये एक ही सूरज है। अब बेटा SON खुद इसराइल के मशरकी लोगों के सामने खुदा के वादा करदा कलाम के जहूर में जाहिर हो गया। हम तारीकी के जमाना में थे और इसी तरह से हमारे असलाहकारों के पास काफी रोशनी थी। गिरजे बनाए और तंजीमें बनाई और उनमें शमूलियत इख्तियार करके दाखिल हो गए और बच्चों को चूमते और बूढ़ों की शादियां करते और मुर्दों को दफनाते और इसी तरह के और काम करते और कलीसिया में रहते। लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी, उसने कहा, शाम के वक्त, और कलाम के किसी हवाला में तब्दीली नहीं की जा सकती। और यही SON जिसने अपने आप को अंडेल दिया, यानी खाली कर दिया, पेंतिकोस के दिन पर शाम के वक्त उसने यही करने का वादा किया, समझे? ये वादे के मुताबिक है। इस हिस्सा को जोड़िए, देखें क्या हो रहा है और देखें उसने किसका वादा किया, फिर आप देखेंगे हम कहां पर हैं। उस चीज को जोड़िए, आप इस ताकतवर और अजीम शख्स का चेहरा आया होते हुए देख सकते हैं। रसूमात ने लोगों को दोबारा अंधा कर दिया है उन अजीम चीजों के सामने जिनकी पेशनगोई की गई थी। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा जिस पर आग लगी हुई थी, तो वो मंजर कितना खूबसूरत था। मूसा मिस्र में गया और कलीसिया के बुजुर्गों को बताया कि खुदावन खुदा उसके पास मैं हूँ के नाम से आया था। वो नाम जमाना हाल का है, ना के मैं था, ना के मैं हूँगा, लेकिन मैं हूँ हमेशा ही एक जैसा, कल आज और अब तक यकसा। वो जमाना हाल को जाहिर करता है, वो जो के मुवाजना करता है अब्रानियों 13:8 के साथ, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। ये अभी तक नबुवत का कलाम है और वो जमात जिसे इस दिन के तजर्बे को उस कलाम के साथ मिलाना था जो असलाहकारों के पास था। ओ, लेकिन ये एक दूसरा दिन है, देखें जिस दिन में हम रह रहे हैं। जैसे कि वो इन दिनों में नहीं आ सकता था, बल्कि उन दिनों में उसे जमीन पर आना था जब वो जमीन पर आया था, उन दिनों में उस तरह जैसे मूसा आया या कोई और नबियों में से आया, क्या इसकी नबुवत नहीं की गई थी? और इन आखिरी अयाम में ये नबुवत की गई कि इस तरह से आना है। ये लूथर की बेदारी की शक्ल में नहीं आ सकता था, ये वेस्ली की बेदारी की शक्ल में नहीं आ सकता था। ये बहाली का वक्त है, यही वक्त है कि जरूर वापस बेटे की असल रोशनी की तरफ, बिल्कुल असल रोशनी की तरफ आया जाए। हो, उस कलाम में हम कैसे कुछ शामिल कर सकते हैं? और आप इल्मे इलाहियात के लोग, आप दुनिया के किसी हिस्से से भी हों, आपको मालूम है कि ये सच है, ये वादा है। यही है जो लोगों को मुख्तलिफ बनाता है, यही है जो मुख्तलिफ किस्म की चीज बनाता है जिनको आप पुकारते हैं। यही वजह है कि रसूमात से पर्दा हटा दिया गया है और वो इसे देखते हैं, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, समझे? यही खुदा का वादा है और हम इसके बरखिलाफ नहीं चल सकते, इसलिए कि कलाम की आयात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जी हाँ, हमें पता है उसने इसका वादा किया था, उसने खुद को अपने लोगों के अंदर खाली कर दिया, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। मूसा के मिस्र में जाने के बाद ये ऐलान कर दिया गया और बाप ने अपने पैगाम को कोहे सीना पर उतरने से और बिल्कुल उस आग के सतून में होकर और पहाड़ पर आग लगाकर साबित कर दिया। क्या हमने गौर किया? वो शख्स जिसने वादा किया था, वो अपने कलाम के साथ जाहिर हुआ। उसके पास अहकामात थे और वो ये अहकामात लेकर आया। वो अहकामात कलाम था। वो कलाम लोगों के पास अभी तक कभी नहीं आया था। बस कलाम हमेशा ही नबी के पास आता है और वो उस जमाने का नबी था। इसी तरह यीशु कलाम था। यूहन्ना एक नबी था और यीशु पानी में उसके पास आया, क्योंकि कलाम हमेशा ही बगैर किसी रुकावट के नबी के पास आता है। समझे, कलाम उसके पास आया। बस कलाम मूसा के पास हैकामात की सूरत में आया और उसने उनको ले लिया। अब क्यों? इससे कबल के कलाम जाहिर होता और सौंपा जाता। मूसा ने अपने चेहरे को छुपाना था उस कलाम की खातिर जो मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ था। वो जानते थे कि कुछ हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिजली का गरजना और चमकना क्या था। तब उन्होंने कहा, मूसा बात करे, ना कि खुदा हमसे बात करे। और खुदा ने फरमाया, आइंदा से मैं ठीक यही करूंगा, मजीद मैं इस तरह दिखाई ना दूंगा। मैं उनके पास एक नबी भेजूंगा, लिहाजा वो ऐसा ही करेगा। मैं अपने नबी के वसीला से कलाम करूंगा। अब अगर मूसा फितरी कानून के साथ, जैसे कि पौलुस रसूल ने यहाँ दूसरे करंथियों में हमारे सामने जाहिर किया है, उसे अपना फितरती चेहरा छुपाना पड़ा था, तो रूहानी चेहरा कितना जलाली होगा जो गैर ईमानदारों से छुपाया गया है मगर उस पर जाहिर किया गया है। कितना ज्यादा वो उसे कहते थे, मूसा एक अजीब शख्स है। कितना ज्यादा आपको कहेंगे, जिसने पर्दा चाक कर दिया है, आग के सतून के अंदर जा चुका है और बरकत के साथ वापस बाहर आ चुका है, और अब आप पर्दा हैं। लोग इसे नहीं देख सकते, वो इसे नहीं समझ सकते। अगर फितरती जलाली था तो माफूकुल फितरत कितना जलाली होगा। अगर फितरती जिसका खात्मा हो गया था जलाली था, तो कितना ज्यादा ये जलाली होगा जिसका खात्मा नहीं होगा। लेकिन अभी तक ये पर्दा में है। ये ईमानदार के लिए पर्दा में नहीं है, बल्कि गैर ईमानदारों के लिए पर्दा में है। वो इसको देख नहीं सकते। खुदा ने हमेशा ही खुद को गैर ईमानदारों से पर्दा में रखा है। रसूमात इसे छुपाती हैं। तब जैसे उन लोगों ने इसे छुपाया, वैसे ही वो आज भी छुपाते हैं। ये रूहानी पर्दा है जो अब हमारे पास है। वहाँ फितरी पर्दा था, जहाँ वो लिखे हुए कलाम से नबी के जरिए साबित होते। एक नबुवत करने वाला लिखे हुए कलाम के साथ आता और उसे उनके लिए आसान बना देता। उन्हें मालूम था कि कलाम वहाँ था, लेकिन उन्हें इसका मतलब मालूम ना था, और मूसा ने उसे उन लोगों के लिए आसान बना दिया। उसने कहा, अहकामात ये फरमाते हैं और ये ऐसा क्यों है। उसने उसे आसान कर दिया। इससे कबल के इसे आसान या सादा बनाया जाता, ये पर्दा में था। और बस आज भी ऐसा ही है, ये लोगों के सामने पर्दे में है, जब तक ये लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए और लोगों के लिए आसान और सादा ना बनाया जाए। खुदा कादर मुतली खुदा यानी कलाम इंसानी बदन के पर्दे में था। गौर कीजिए, अब हम जानते हैं कि वो गैर ईमानदारों के वास्ते छुपा हुआ था, लेकिन ईमानदारों पर उसने अपने आप को जाहिर कर दिया था। गौर कीजिए, तन्हा मूसा ही उस आग के सतून में दाखिल हुआ। कोई भी शख्स उसके साथ नहीं जा सकता था। ऐसा नहीं था। वो हमसे क्या बोलता है कि तुम पैंती कोस के ग्रोह में शामिल होकर अंदर नहीं आ सकते। देखें, उसने कभी भी ये एक ग्रोह पर जाहिर नहीं किया, उसने इसे फर्दे वाहिद पर जाहिर किया, और यही तरीका आज भी है। आप कहते हैं, मेरा तल्लुक एक कलीसिया से है, मैं इससे तल्लुक रखता हूँ, लेकिन ये काम नहीं करेगी, समझे। और अगर कोई भी मूसा की नकल करके उसके पीछे चलने की कोशिश करता, तो उसे मौत का सामना करना पड़ता। इसी तरह आज ये रूहानी मौत है, यानी नकल करने की कोशिश करना। यही वो है, आज रात हम ऐसी जगह हैं, ऐसे ग्रोह के अंदर, जिनके दरमियान नफसानी मुशाबत रखने वाले लोग बरपा हो रहे हैं। कोई शख्स उसकी मानित काम करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ जिंदगी गुजारता है, और वो शराब पी सकता है, सिगरेट पी सकता है। औरतें कोई भी जिंदगी गुजार सकती हैं, ज्यादातर जो वो चाहती हैं, किसी भी तरीके से दुनिया को पसंद करते हुए और घर पर ठहर कर टीवी देखते हुए और उन दुनियावी चीजों में पड़ी रहती हैं, और फिर भी अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहती हैं। वो एक असल की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब तक उन पर कभी भी जाहिर नहीं किया गया। जब ये जलाली जाहिर हो जाता है और आप इसमें चलते फिरते हैं, तो फिर कोई चीज जो आपके अंदर होती है निकल जाती है, फिर आप एक पर्दा बन जाते हैं। इसकी नकल करना मौत थी, ये काम नहीं करेगी। मूसा पर्दा था, वो लोगों के लिए जिंदा कलाम था, और आज जो लोग पर्दा में हैं, वो बिल्कुल यही चीज हैं। वो लिखे गए खतूत हैं, जिन्हें तमाम आदमी पढ़ते हैं, एक नया खत नहीं, लेकिन वो खत जो लिखकर जाहिर कर दिया गया है, यही वो हैं जो कलाम का और इस दिन के वादे का यकीन करते हैं कि खुदा अपने रूह में से तमाम लोगों पर अंडेल रहा है, और यही लिखे गए खतूत हैं। और जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर इसकी नकल करने की कोशिश करता है तो ये गुमराह हो जाता है। आपकी जिंदगी जाहिर कर देती है कि आप क्या हैं। एक मर्तबा एक लड़का था, वो किसी मुसीबत में फंस गया था। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो अदालत में चला गया और जज ने कहा, मैं तुम्हें मुजरम पाता हूँ, मैं तुम्हें उम्र की कैद देता हूँ। लड़के ने कहा, मैं अपना मुकदमा खुद हल करने की कोशिश करता हूँ। लड़के ने कहा, मैं अपने तहरीरी कागजात चाहता हूँ। जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई भी तहरीरी सबूत नहीं है, तुम्हारे पास जो तहरीरी कागजात हैं, वही तुमको मुजरम साबित करते हैं। और आज भी यही तरीकेकार है। सबब यह है कि कलीसिया इतनी मुखलिस नहीं है जिस तरह से उसे होना चाहिए। यही सबूत है, ये झूठी है। हमें ज्यादा मुखलिस होने की जरूरत है। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के हर लफ्ज पर यकीन करें। जरूरी है कि हम तलाश जारी रखें जब तक कलाम का हर एक लफ्ज हमारे लिए हकीकी ना बन जाए। समझे, सबूत यही है जो हमें अंदर जाने से रोकता है। मगर एक मर्तबा आपको इस फंदे से निकलने का मौका मिलता है। बिल्कुल उसी अदालत में उस लड़के के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, वो उसकी अदायगी नहीं कर सकता था। जुर्माना हजारों डॉलर में था, लेकिन उसका एक बड़ा भाई था जो आया और उसने उसके लिए अदायगी की। अब हमें एक बड़ा भाई यीशु मिल गया है, यानी खुदा का बेटा, और वो हमारी अदायगी करने को आया। अगर हम सिर्फ ये यकीन कर लें और फिर हम उसके साथ पर्दे के अंदर दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे, जैसे कि वो हमारा मूसा है। यीशु हमारा आज का मूसा है। मूसा पर्दा था और उस पर्दे के अंदर लोगों के लिए जिंदा कलाम था। आज यीशु पर्दे में रहकर लोगों के सामने जिंदा कलाम है, जैसा कि यीशु कलीसिया के अंदर मौजूद है। पाक रूह खुदा का बेटा लोगों में रहकर इस जमाने के वादे के कलाम को बयान कर रहा है और इसे बिल्कुल हूबहू पेश कर रहा है। वो अब भी यकसा है। और याद रखें, मूसा ने ऐसा ही किया और इसे जाहिर किया, ना कि सारी दुनिया पर, लेकिन खुरूज करने वाले लोगों के सामने, सिर्फ एक ही जमात के लोग। ये वो थे जो खुरूज में बाहर आए थे, खुरूज में। और आज रूल कुछ उन लोगों के सामने है जो कहते हैं इलाही शिफा ठीक नहीं है। जब मैं बातचीत कर रहा था किसी दिन, जब डॉक्टर ने मुझे एक औरत के लिए बुलाया, ओ अरे वहाँ तो चार या पांच बीमार मरीज पड़े हुए थे, जिन्हें कुछ ही घंटे दिए गए थे, जो कि करीबुल मौत थे। रूल कुछ ने उन्हें शिफा बख्शी। डॉक्टर इस पर सवाल कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्यों? उसने कहा, मैं जबकि वो मेरे मरीज हैं। मैंने कहा, ये थे लेकिन अब ये खुदा के हैं और अब ये उसके लोग हैं, समझे? और बस आप देखते हैं कि यही चीज है कि खुदा एक खुरूज को बुला रहा है कि जिस्मानी पर्दा के पीछे से बाहर आए, जो हकीकी रूप लेने की कोशिश करे, जो कलीसिया में शामिल होने की कोशिश करे, ना कि उन सब में शामिल होने की कोशिश करे, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और तमाम पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं। ये एक इनफरादी मामला है, ये आप और खुदा का मामला है। आपको अंदर दाखिल होना है, ना कि आपकी कलीसिया को, ना आपके ग्रोह को, ना कि आपके पासबान को, लेकिन ये आप ही हैं जिसे अंदर जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप मूसा की दूसरी खूबी पर गौर करें। जब वो बाहर आया, तब एक नबी होते हुए, एक अजीम इंसान होते हुए, जो कि वो था, जब वो कलाम के साथ बाहर आया, लोगों ने देखा कि वो तब्दील हो चुका था, उसके साथ कुछ हुआ था। जब उस वक्त के तस्दीक शुदा कलाम के हकामात के साथ बाहर आया, तो वो एक तब्दील शुदा शख्स था। और क्या आप ऐसे होंगे जब आप उस इंसानी पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं, जो कि इस तरह की इबादत पर हंसते हैं? वो शख्स जिसे इलाही शिफा पर ठोकर लगती है और कहता है कि मौजजात के दिन तो गुजर चुके हैं, आपने वहाँ पीछे ही इंसानी पर्दा, रस्मी पर्दा गिरा दिया है और हर कोई जानेगा कि आपके साथ कुछ हुआ है। जिस तरह हमारे मोहतरम भाई जिम ब्राउन, मैं ख्याल करता हूँ कि बहुत सारे प्रेस्बिटेरियन जानते हैं कि उसे कुछ हुआ था, क्योंकि वो रस्मी पर्दे के पीछे से आया था। उसने लोगों में कुछ देखा जिसका वो कायल हो गया और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। ठीक है, आप जब आप पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं, तब आप पूरी तरह से लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। वो देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ हुआ है। गैर ईमानदार के लिए कलाम पर्दे में है, लेकिन ईमानदारों के लिए पूरी तरह आया है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो ये खुदा ही था उन दिनों में। ये खुदा ही इंसान के अंदर था जो अपने बेटे यीशु मसीह में था। हम ये ईमान रखते हैं, ना कि एक नबी और ना कि एक मामूली सा आदमी, ना ही एक आम इंसान था। ये मसीह में खुदा था, खुदा इंसान में था। अलुहियत की सारी मामूरी मुकम्मल तौर पर इंसान में मौजूद थी। अब यही खुदा इंसानों में है। खुदा की सारी अलुहियत की मामूरी मुकम्मल तौर पर उसकी सारी कलीसिया के अंदर खुद को जाहिर करते हुए, अपने कलाम को पूरा करते हुए मौजूद है। अब हम जानते हैं, तमाम जमानों में खुदा ने अपने ऊपर खाल चढ़ाई रखी। वही खुदा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ये मुझे याद दिलाता है एक कहानी के मुतालिक जो जनूब में वाकया हुई थी। और लिहाजा वहाँ एक मसीही घराना था, और फिर उस मसीही घराने में खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे, और वो सोचते थे कि खुदा उनको तमाम मुसीबतों से बचाता है, और जैसे के वो बचाता भी है। और उनके पास एक छोटा लड़का था, तकरीबन 7 या 8 साल का, और वो संडे स्कूल जाता, और वो बहुत ही अच्छा छोटा लड़का था, लेकिन वो आंधी से बहुत डरता था, खास तौर पर जब बिजली चमक रही होती थी। मैंने ये कहानी एक शख्स को बताई थी, और दूसरे ही दिन उस शख्स के शिफायाब हो जाने के बारे में ये मजमून का हिस्सा बाहर आया। तो किसी खादम ने कहा, भाई ब्रैनम, वो लोग आपको खुदा बनाते हैं। ठीक है, वो तनकीद करने वाला था, बस मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नरमी से इसके साथ बात करूंगा ताकि इसे तकलीफ ना पहुंचे। आपको मालूम है, सिर्फ थोड़ा सा नरमी से। मैंने कहा, क्या इस तरह से होना कलाम से दूर है, समझे? मैंने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा, यीशु ने नबियों को खुदा कहा, समझे? ये दुरुस्त है, खुदा। और वो कहते हैं, ठीक है, आप लोग खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा पहुंच से दूर नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा है। ये बिल्कुल वही है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ जिस तरह उसने वादा किया था। ये छोटा खानदान जिसमें हम पाते हैं, मैंने उसको ये कहानी सुनाई जो कि मेरे दिमाग में अभी आई है, कि एक रात आंधी आ गई और माँ ने छोटे से कहा, अब तुम ऊपर जाओ बेटा और सो जाओ। उसने कहा, माँ, मैं खौफजदा हूँ। उसने कहा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऊपर जाओ और सो जाओ। वो छोटा लड़का ऊपर जाकर लेट गया और बिजली खिड़कियों के अतराफ चमकने लगी, और वो छोटा बच्चा बहुत डर गया और उसने अपना चेहरा चादर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वो अब भी आवाज सुन सकता था। वो बिजली या चमकने को खिड़कियों से देख सकता था और गर्ज की आवाज को सुन सकता था। बस उसने कहा, माँ, और उसकी माँ ने कहा, छोटू, तुम क्या चाहते हो? छोटू ने कहा, यहाँ ऊपर आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ। बस वो सीढ़ियों से ऊपर गई, जैसे कि एक अच्छी वफादार माँ करेगी, और वो ऊपर गई और उसने छोटू को अपनी बाहों में ले लिया, और उसने कहा, छोटू, माँ तुमसे एक लम्हा के लिए कोई बात करना चाहती है। उसने कहा, ठीक है माँ। माँ ने कहा, अब तुम जरूर ये बात अपने जहन में रख लो, हम गिरजाघर मतवातर जाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम एक मसीही खानदान है, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। और उसने कहा, हम ये यकीन रखते हैं कि आंधी या जो कुछ भी हो, खुदा हमारी पनाह है। उसने कहा, माँ, मैं इसमें से हर एक बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन उसने कहा, जब वो चमक बहुत ज्यादा करीब होती है, उसने कहा, मैं खुदा को उसकी खाल के साथ चाहता हूँ जो उसके ऊपर हो। बस मेरे ख्याल में ना कि सिर्फ वो छोटा बच्चा, बल्कि हम सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी खाल के साथ मौजूद होता है। हमें यहाँ मालूम होता है कि खुदा ने हमेशा ही अपने ऊपर खाल रखी है। जब मूसा ने उसको देखा तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी ताकि एक आदमी की मानिंद नजर आए। जब खुदा पर्दे के पीछे था तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी, और खुदा आज रात अपनी कलीसिया में खाल के पर्दे में होकर अपनी कलीसिया में मौजूद है। अब भी आज रात वो यकसा खुदा है, हम ऐसा ही पाते हैं। लेकिन अब भी हमेशा की तरह खाल का पर्दा जो रसूमात को जकड़े हुए है, वो यकीन नहीं रखते कि यही खुदा उन्हें कायल कर रहा है कि ये लोग इस तरह अमल करें। देखें, ये है क्योंकि खुदा ने अपनी कलीसिया की खाल में अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उस पर खाल है, ये दुरुस्त है। वो गैर ईमानदारों से छुपा हुआ है और ईमानदारों के सामने आया है। जी जनाब। अब जबकि उनका रस्मी पर्दा बुजुर्गों की रसूमात का, जिसको कलाम ही ने तोड़ा है, हो बेशक आज फिर वो एक वाज़े सूरत में दिखाई देता है। हमने उसे देखा, खुदा दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में है। अब्रानियों 1 में इसी तरह कहा गया है। इसी तरह पदेश 18 को देखें, याद रखें, खुदा वहाँ खड़ा होने वाला इंसान और खाने वाला और इब्राहिम से बातें करने वाला था, और बता दिया गया कि सारा वहाँ अंदर खेमे में क्या कर रही थी। और यीशु ने फरमाया, जिस तरह यह सदूम के दिनों में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम की आमद पर भी होगा। अलूयत दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में होगी। यीशु ने ये नहीं कहा जब खुदा का बेटा जाहिर होगा, लेकिन लूका 17 बाब में, मैं यकीन रखता हूँ 20 और 21 आयत के बारे में यही कहीं इसी के साथ उसने कहा जब इब्ने आदम जाहिर होगा। इब्ने आदम वापस कलीसिया में दोबारा आता है और बनी नौ इंसान में जाहिर होता है, ना कि इब्ने खुदा, लेकिन दोबारा इब्ने आदम बनकर आखिरी दिनों में अपनी कलीसिया में वापस आता है। हम जानते हैं कि उसने खुदा के वादों में से ये एक वादा किया था। पुराने अहदनामे में हम एक दूसरी चीज पर गौर करते हैं। मेरे पास खरूच में यहाँ एक ऐत है कि पुरानी तुक्स की खाल, उस खाल ने क्या किया, उसने खुदा के जलाल को लोगों से छुपा दिया। पुरानी तुक्स की खाल ने, हालांकि लोग उसे देख भी नहीं सके, क्योंकि ये ऐसी खाल थी जो उसे रोके हुए थी। वो ऐसी खाल थी जिसमें खुदा का जलाल खाल के पीछे था, और अब भी खुदा का जलाल आपकी खाल के पीछे है। ये दुरुस्त है और रसूमात इसे देख नहीं सकती। ये पर्दे के अंदर है जहां उसका कलाम था। उस पुरानी तुक्स की खाल, उस खाल के अंदर जो पीछे थी क्या था, उसमें कोई खूबसूरती ना थी जिसकी हम तमन्ना करते। और जब ये बदन बना और हमारे दरमियान रहा, तब भी कोई खूबसूरती ना थी कि हम उसकी तमन्ना करते। और अब आज भी वही बात है, एक मर्द या औरत में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी हम तमन्ना करें, लेकिन ये क्या है जो उसके पीछे है, यही कुछ तो है। ठीक है, आप कहते हैं वो साथी, मैं जानता हूँ वो शराबी था, वो ऐसा करने का आदी था, मुझे इसकी परवाह नहीं वो क्या करने का आदी था। उस खाल के पीछे क्या छुपा हुआ है, उसके पीछे क्या है, यही तो है जो शुमार किया जाता है। यही है जिसने लोगों को अंधा किया हुआ है। खाल ने लोगों को अंधा कर दिया है। देखें, वो कहते हैं मुझे याद है जब वो औरत ऐसा किया करती थी, मैं जानता हूँ वो क्या करती थी, लेकिन अब उसके बारे में क्या ख्याल है। देखें, वो खालें जो के कभी तुक्स पर होती थी, लेकिन अब ये खुदा के जलाल को छुपा रही हैं। इसे लेकर उसने इसके पीछे मस्कन बना लिया है। ये एक जानवर पर थी, मगर अब ये खुदा के जलाल पर बसेरा किए हुए है। और आज रात इसी तरह आपकी खाल भी बदली जा सकती है, खुदा के लिए एक मस्कन बनाया जा सकता है। खुदा बनी नौ इंसान में रहता है। देखें, पुरानी तुक्स की खाल, हमें पता है उसके पीछे अंदर कलाम था, और वो कलाम और इसी तरह नजर की रोटी भी थी। अहद के संदूक पर खून का छिड़काव किया जाता था, और ये क्या था, ये खुदा का शाहाना जलाल था। अब कलाम बीज है, और ये फलदार नहीं हो सकता जब तक वो बेटा इसमें शरीक नहीं हो जाता। बेटे के पास बीज है कि उसे उगाए ताकि ये बार बार हो, और सिर्फ यही तरीका है। आप कलाम को लें, समझे, और खुदा का कलाम अपने दिलों में लें और शाहाना जलाल में चलें। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये नजर की रोटी है, ये मन है जो कि सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। सिर्फ यही खा सकते हैं, इन्हीं को खाने की इजाज़त है, सिर्फ वो लोग जिनको इजाजत दी गई है इसे जानते हैं। पालूस ने कहा जलाल से जलाल में बदलते रहें। आप देखें, आखिरकार इसमें तब्दीली आती रहती है जब तक ये वापस अपनी असल हालत में नहीं पहुंचता। ये गेंदे के बीज की मानिंद है, एक फूल का बीज ये जमीन पर गिरता है, मकई का बीज जमीन पर गिरता है। पहली चीज क्या है, ये उगता है और ये एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर ये फूल बन जाता है, फिर फूल से वापस अपनी असल हालत बीज में। ठीक, बिल्कुल यही है जो के कलीसिया ने किया है। ये लूथर वेस्ली से होकर अब वापस असल बीज की तरफ आ रही है, वापस अपने असल जलाल में, वापस उसी जलाल में जो इब्तदा में था। वो बेटा जो मशरिक से नमूदार हुआ, बिल्कुल वही बेटा बिल्कुल इसी बात को मगरिब में भी जाहिर कर रहा है, जलाल से जलाल में तब्दील हो रहा है। ये गैर कौम से तब्दील हुआ लूथर की तरफ, और लूथर से वेस्ली की तरफ, और वेस्ली से निकलकर पेंतिकोस के अंदर, और फिर सिलसिला बा सिलसिला जलाल से जलाल में तब्दील होते हुए पोशीदा मन को पेश कर रहा है। अब ये तैयार है, पक चुका है, इसको वापस बिल्कुल वही लाया जाए जैसा कि इब्तदा में था। उसकी वही खिदमत, वही यसु, वही ताकत, वही पाकरू, बिल्कुल वही जो पेंतिकोस के दिन पर उतरा, बिल्कुल वही पाकरू जो आज के दिन जाहिर हुआ है, जलाल में से जलाल और जलाल तक, और वापिस अपने असल बीच की जानिब रूल कुछ के बपतुस्मा के साथ वापिस आता है, उन्हीं निशानों के साथ, उन्हीं अजीब कामों के साथ, उसी बपतुस्मे के साथ, एक ही किस्म के लोग एक ही तरीके से अमल करते हुए, एक जैसी ताकत के साथ, एक ही जज्बे से, ये जलाल में से जलाल तक, और अगला जलाल इस जलाल से तब्दील शुदा जलाल होगा। एक बदन के अंदर जिस तरह उसका अपना जलाली बदन है, जहाँ हम उसे देखेंगे, इब्राहिम ने बिल्कुल यही देखा। अब गौर करें, हम देखते हैं कैसे ये तब्दील हो गया, जबकि कलवरी पर हमें उसके जलाल में हिस्सादार बनने की दावत दी गई। अब पहला करिन्थियों 12 में हम उसके बदन में बपतिस्मा याफ्ता हुए, एक ही रूह में हम बपतिस्मा याफ्ता हुए, ना कि एक पानी में बल्कि एक रूह में हम सब बपतिस्मा याफ्ता हुए, ये दुरुस्त है, और तब फिर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा देर नहीं रोक रहा, समझे, मुझे उम्मीद है मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये एक तरह के बहुत बड़े सुर के मिलाप की तरह बजाया जा रहा है, या एक ड्रामे में अदाकारी की तरह। मैं सुर के मिलाप और ड्रामे के मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये खेल देख रहा था। मैं कारमेन के मुतल्लिक बात कर रहा था जब मेरी बेटी और दूसरे लोग इसमें थे, और वो उस सुर के मिलाप को कारमेन वाले ड्रामे में बजा रहे थे, वो अदाकारी कर रहे थे, वो मौसीकी जो बजाई जा रही थी उसी के मुताबिक अदाकारी कर रहे थे। यही एक तरीका है जब आप रूल कुछ के वसीला से मसीह के अंदर बपतिस्मा याफ्ता होते हैं। अब देखें, आप में से बहुतों ने वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी, उस अजीम रूसी मुसन्नफ की जिसने ये कहानी बनाम पीटर और बेड़िया तहरीर की, और कैसे उसने उन किरदारों को और अलामतों को हर चीज के ऊपर अदा करवाया। और कोई भी शख्स जो ये कहानी जानता है, जो कागज से देकर पढ़ी जाती है, तो वो उस सुर को सुन सकता है कि कैसे ये खेल किरदारों पर पेश किया गया और इसे बजाया गया, क्यों वो हर एक तब्दीली को जानते हैं, वो उसे यहाँ कागज पर देख सकते हैं और तब्दीली को समझते हैं। लेकिन अब अगर मौसीकार कोई बात तहरीर करता है और हमें यह मालूम होता है कि ये ठीक तौर पर अदा नहीं की गई, तो क्या होता है, हमें मालूम होता है कि कोई ऐसी बात है जो वाके हुई है, किसी चीज की कमी है, जब हम उन्हें देखते हैं और जिसने इसे बनाया है, और फिर जब सुर बजाया जा रहा होता है तो ये गलत मौसीकी पेश करता है, वहाँ कोई गलती है और हदायतकार ने कोई गलती की है। देखें, और आज भी यही मसला है मेरे लूथरन भाइयों, मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंटिकोस्टल भाइयों, मेरे तमाम भाई जो मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, आज यही मसला है। देखें, आप कोशिश कर रहे हैं कि उस सुर को पेश करें जो लूथर वेस्ली के दिनों में बजाया जा रहा था, इस तरह जबकि दरअसल मौसीकी का सफा यहाँ दिखाता है कि ये एक दूसरा जमाना है। देखा, समझे, हम लूथर की रोशनी में नहीं जिंदगी बसर कर सकते, वो एक असलाहकार था, हम उसके किरदार को पसंद करते हैं, मगर हम उसे बजा चुके, लेकिन यहाँ हम किताब के बिल्कुल पिछले आखिरी हिस्से में हैं, समझे, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे इस तरह नहीं बजा सकते। अब वाहिद एक ही तरीका है आप ऐसा करने के काबिल बने, मेरे भाइयों, ये ऐसे है, तमाम दुनिया भर के भाइयों, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के भाइयों, मैं कह सकता हूँ इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस हदायतकार के करने के लिए, हदायतकार को बिल्कुल उसी रूम में दाखिल होना है जो मौसीकार के अंदर थी, फिर वो इसे समझ सकता है। और जब कलीसिया सुर मिला लेती है तो फिर दुनिया निशानों और अजीब कामों को उनमें देखती है, जब कलीसिया हदायतकार और सब मौसीकार की रूह में आ जाते हैं, और जब वो कहते हैं मौजजात के दिन तो गुजर चुके हैं, तो ये फिर दुरुस्त सुर नहीं बजाता, लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक तरफ मुड़ता है और उसकी दुरुस्त रूह को लेता है, आप उसे कैसे कर सकते हैं जब तक मौसीकार की रूह में नहीं आते, आमीन। जब आप कहते हैं मौजजात के दिन कभी नहीं गुजरे, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन। जब हम जोर से कहते हैं यीशु मसीह कल आज और अब तक यक्षा है, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन। रूल कुछ के उतरने के बाद आपको कुवत मिलेगी, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन, मैंने इसे पा लिया। अब बाद में इसके मुतल्लक कोई अंदाजा लगाने की बात नहीं है, क्योंकि सुर का मिलाप कलाम के साथ मिलाप रखता है, और ये हो रहा है। अरे ये तो बड़ी शानदार बात है, मौसीकार और हदायतकार जरूर है कि वो एक ही रूह में हों, और जरूर है कि सब साजिंदे भी एक ही रूह में हों, और फिर दुनिया हैरान होगी कि क्या हो रहा है। वो इश्तराकियत के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और मुझे इसके साथ परेशान कर दिया, और ये सारा जुड़ना और ये सब कुछ और ये अलग होना हो रहम हो, इस तरह ये सब बातें बेकार की हैं, जबकि खुदावंद का आना बहुत करीब है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, मैं डरता हूँ कहीं हदायतकार मौसीकार की रूह से बाहर ना निकल जाए। जब हम मौसीकार की रूह को लेते हैं जो खुदा की असल ताकत है, क्योंकि बाइबल ने फरमाया, गुजरे जमाने के लोगों ने रूहे पाक की तहरीक से इस बाइबल को लिखा, आप उन दो चीनी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा होते हुए देखेंगे, इस तरह खुदा का कलाम और एक ईमानदार इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही रूह में हैं, वो दोनों एक ही चीज हैं, वो अलहदा किए हुए टुकड़े बिल्कुल इकट्ठे एक दूसरे में बैठते हैं। आज हमें उन हदायतकारों की जरूरत है, ये दुरुस्त है। वापिस कलाम की तरफ वापिस आकर उसका यकीन करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा गया है, तब आप खुद खुदा को देखते हैं, ये पर्दे का उठ जाना है, तब ड्रामा हकीकत बन जाता है। आज वो कहते हैं जी हाँ, वो एक तारीखी खुदा है, हम जानते हैं उसने बहरे कुलजम को पार किया, उसने ये सब कुछ किया, और वो उस आग की भट्टी में अबरानी बच्चों के साथ था। तारीख का खुदा कितना अच्छा है, क्या ऐसा नहीं, क्या वो आज यकसा नहीं है? इंसान ने हमेशा से खुदा को जलाल दिया है, जिसकी खातिर उसने ऐसा किया, ये ख्याल करते हुए वो नजरअंदाज कर रहा है कि इंसान क्या कर रहा है। इंसान में सिर्फ यही है जो वो करता है, और मेरे भाइयों आज भी यही बात है, बिल्कुल यही बात। ओ मेरे अजीजो, आइए वापस चलें और सुर संगम को ठीक बजाएं, जहां दुनिया के लोग उसे देख सकें। यीशु ने फरमाया, अगर मैं जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं तमाम इंसानों को अपनी तरफ खींच लूंगा, और वो कल आज और अब तक यकसा है। हदायतकारों और साजिंदों को बिल्कुल ठीक मौसीकार की रूह में आने दें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर हमें इसके मुतालिक अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती, तब हम उसके साथ शनाख्त किए जाते हैं। अब्रानियों 13:8 ने फरमाया, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हम उसके साथ इमाल 2 में भी शनाख्त किए जाते हैं, हम उनके साथ शनाख्त होते हैं, एक ही बपतिस्मे के साथ, एक ही बात के साथ, तब भी वो सब कुछ था और वो सब कुछ है, वो सब कुछ था, वो सब कुछ है, इसी तरह हम हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है। जिस तरह अगर मैं एक सच्चा अमरीकी बनना चाहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी शनाख्त उसकी हर चीज के साथ होनी चाहिए जो अमरीका की थी और जो उसकी है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी शनाख्त उसी के साथ बनाई है कि मैं एक सच्चा अमरीकी हूँ। अगर मैं एक सच्चा अमरीकी हूँ तो फिर मैं प्लेमाउथ चट्टान पर उतरा हूँ, आमीन। अगर मैं एक अमरीकी हूँ तो मैंने ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया, आप भी प्लेमाउथ चट्टान पर अपने जायरीन बुजुर्गों के साथ उतरे, प्लेमाउथ चट्टान पर जब वो वहाँ उतरे मैं उनके साथ था, बस आप में से भी हर कोई वहाँ था। मैं पॉल रिवर के साथ घोड़े की सवारी पर सवार हुआ, बिल्कुल सड़क से नीचे आया ताकि लोगों को हर एक खतरे से खबरदार करूं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल यहीं से वादी फोरेज से मैं उस बर्फानी इलाका डेलावेयर में सिपाहियों के काफले के साथ गुजरा, जिनमें से आधों ने जूते भी नहीं पहने हुए थे। मैंने सारी रात जॉर्ज वाशिंगटन के साथ हाथ खड़े करके दुआ की, मैंने डेलावेयर को अपने दिल में एक रोया के साथ पार किया, हम अमरीकी हैं। जी हाँ जनाब, वादी फोरेज पर मैंने यकीनन यही किया। मैंने वापसी पर उन असल शुक्रगुजारी करने वाले बुजुर्ग खादमों के साथ शुक्रगुजारी की, मैंने फिर खुदा का शुक्रिया अदा किया। अगर मैं असल अमरीकी हूँ तो मेरी उस मेज पर शनाख्त हुई थी, अगर मैं असल अमरीकी हूँ तो मेरी शनाख्त उस वक्त हुई थी जब मैं स्टोन वॉल जैक्सन के साथ खड़ा हुआ था, अगर मैं सचमुच अमरीकी हूँ तो मेरी शनाख्त बोस्टन की चाय की दावत पर भी हुई थी। जी हाँ जनाब, जब हमने इनकार कर दिया उन चीजों को अपनाने के लिए जो हमारी आंखों की खुशनुमाई के लिए रखी गई थी। ठीक है, मैं जैसा कि असल अमरीकी हूँ, मेरी वहाँ इसी के साथ शनाख्त हुई थी। जी हाँ जनाब, ओ मेरे अजीजो, मैंने आजादी की पहली घंटी 4 जुलाई 1776 में बजाई, मैंने आजादी की घंटी यहाँ बजाई और ऐलान कर दिया कि हम आजाद हैं। ये एक असल अमरीकी होते हुए मुझे करना था। इनकलाब लाने वालों में मेरी उसकी शर्म के साथ शनाख्त हुई थी, जब भाई उनके खिलाफ लड़ रहे थे, मुझे उसकी शर्म भी ऐसे ही बर्दाश्त करनी है, बिल्कुल जैसे मैं उसकी शान में शामिल हुआ। अगर मैं अमरीकी हूँ तो मुझे ऐसा ही होना है, मैं उसके साथ पहचाना गया था। जी हाँ जनाब, मेरी वहाँ गेट्सबर्ग में भी शनाख्त हुई थी जब लिंकन ने अपनी तकरीर पेश की। जी हाँ जनाब, उन लहूलुहान सिपाहियों के साथ मैं वैक जजीरा पर था, मैं वैक जजीरे से उठा गुआम पर, मैंने उस झंडे को लहराने में मदद की, मैं एक सच्चा अमरीकी हूँ, आमीन। जो कुछ वो है वो मैं हूँ और इस पर फख्र करता हूँ। जी हाँ, बेशक तमाम अमरीकी वही हैं, जो कुछ वो है। अमरीकी होने के लिए मैं अब भी वही हूँ जो वो सब कुछ है। मुझे भी होना है क्योंकि मेरी उसके साथ शनाख्त हुई है। एक सच्चा मसीह होने में भी बिल्कुल यही बात है कि आपकी मसीह के साथ शनाख्त हो। मैंने मूसा के साथ मनादी की और जंग या नूह के साथ लोगों को आने वाली सजा से खबरदार किया। एक हकीकी मसीह होने के नाते मैंने ये किया। मैं जलती हुई जाड़ी में मूसा के साथ था। मैंने आग का सुकून देखा, मैंने उसका जलाल देखा। एक मसीही होते हुए मैं वहाँ बियाबान में मूसा के साथ था। एक मसीही होते हुए मेरी खुदा के साथ उन चीजों में जो उसके पास थी शनाख्त होनी चाहिए। मैंने उसका जलाल देखा था, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। अब मुझे वजाहत करके उससे दूर हटाने की कोशिश मत करें, क्योंकि सबब यह है कि मैं वहीं था। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ कि क्या हुआ। जी हाँ जनाब, मैं बहरे कुलजम पर था जब मैंने खुदा के रूह को नीचे उतरते हुए और पानी को एक तरफ से अलहदा करते हुए देखा था, ना के सरकंडों के गुच्छों के वसीले जो वो आज कहने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 90 फीट समंदर के जरिए से देखा। मैं खुदा के रूह को देख चुका था। मैं मूसा के साथ बहरे कुलजम में से खुश्क जमीन पर चलकर गुजरा और उस बहरे कुलजम को पार किया था। मैं कोह सीना के करीब खड़ा हुआ और गर्ज और बिजली गरजती और चमकती हुई देखी। मैंने उनके साथ वहाँ मन खाया, मैंने उस चट्टान से पानी भी पिया। मैं अभी तक आज रात यही कर रहा हूँ। मेरी मन खाने वालों के साथ शनाख्त हुई, मेरी उनके साथ भी शनाख्त हुई जिन्होंने चट्टान से पानी पिया। मेरी उस वक्त भी शनाख्त हुई जब यशवा ने नरसिंगा बजाया था और यरहू की दीवारें गिर गई थीं। मैं दानियल के साथ शेरों की मांद में भी था। मैं अब्रानी बच्चों के साथ आग की भट्टी में भी था। मैं कोए कर्मल पर एलिया के साथ भी था। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ तनकीद निगारों के सामने था। मैंने खुदा के रूह को उतरते हुए देखा, मैंने खुदा की आवाज़ को कहते हुए सुना, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जी हाँ जनाब, यकीनन मेरी उसके साथ शनाख्त हुई, ये बिल्कुल ठीक है। लाजर की कब्र पर भी मेरी शनाख्त हुई जब उसने लाजर को जिंदा किया। मेरी शनाख्त कुएं पर उस औरत के सामने हुई जब उसने उसको उसके गुनाह बता दिए। जी हाँ जनाब, यकीनन मेरी शनाख्त उसके साथ उसकी मौत में भी हुई और मेरी शनाख्त पहले ईस्टर पर भी हुई। मैं उसके साथ मौत से जी उठा, मैं उसकी मौत में भी उसके साथ शनाख्त किया गया। बालाखाने में 120 के साथ भी था, मैं वहाँ उनके साथ शनाख्त किया गया। ओ मैं खुदा में महसूस करता हूँ। ओ मेरे खुदाया, मेरी वहाँ शनाख्त हुई थी, मैं उनके साथ था, मेरी शनाख्त हुई थी। मुझे भी वही तजर्बा हुआ जो उन्हें हुआ था। एक सच्चा मसीह होने के लिए मैं वही था जब ऐसा हुआ। मैं उस आने वाली बड़ी आंधी का गवाह हूँ, मैं उसका गवाह हूँ। मैंने खुदा की उस ताकत को महसूस किया जैसे ही उसने जोर से सब कुछ हिला दिया। मैं उनके साथ था जो गैर जुबानों में बातें करते थे। मैंने वहाँ अंदर आने वाले मसा को महसूस किया। मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ शनाख्त किया गया था, उनके साथ जिनसे रुल्क उसने गैर जुबानें बोलना शुरू की। मैं पतरस के साथ था, इससे कबल के इमाल दोबा पर तनकीद करते जब उसने अजीम वाज किया जो उसने पेश किया, मेरी उसके साथ शनाख्त हुई। जी हाँ जनाब, इमाल चार में जब वो इकट्ठे थे मैं उनके साथ था। जब वो इमारत हिल गई दुआया इबादत के बाद, वो इमारत हिल गई जहां वो इकट्ठे बैठे थे, मैं वहां उनके साथ था। मैंने ही मरीक की पहाड़ी पर पालूस के साथ मनादी की। जी हां जनाब, मैं पितमस के जजीरा में योहन्ना के साथ था और उसकी दूसरी आमद भी देखी। मैं कलीसिया की तश्कील नौ में लूथर के साथ था। मैं वेस्ली के साथ भी था जो जलती हुई लकड़ी के निशान की तरह था, आग से खींच कर निकाला गया जब बहुत बड़ी बगावत एंग्लिकन कलीसिया के खिलाफ फूट पड़ी। मैं वहाँ उसी के साथ था और मेरी शनाख्त आज रात 1964 में फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के इसी ग्रो के साथ हुई है। बिल्कुल इस किस्म के तजर्बे के साथ मुझे जरूर मसीह बनना और होना चाहिए। जरूर है कि मैं शनाख्त शुदा हूँ जहाँ खुदा का कलाम जाहिर किया जा रहा है। मैं ऐसे ग्रोह के साथ शनाख्त किया जाता हूं जो खुदा के रूप में महसूस करता है। मैं एक ऐसे ग्रोह के साथ शनाख्त किया जाता हूं जो ये जानता है कि उसने पर्दा हटा दिया है। वो जानता है कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो जो जानता है कि ये मजबूत जोशो जज्बा नहीं, ये यीशु मसीह है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आज रात मैं उसी ग्रोह के साथ शनाख्त किया गया हूं जो अभी तक बिद्दी ग्रो कहलाता है, फिर भी अभी तक जोशो जज्बे वाला ग्रो है खुदा के कलाम की वजह से। मगर मैं यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि निजात के लिए ये खुदा की कुदरत है और मैं उनमें से एक हूँ। मैं उनके साथ जिंदा खत हूँ। मैंने ये साबित करके बोला है कि खुदा मर्दों और औरतों में इंसानी शक्ल में पर्दे में मौजूद है। ओ खुदा ने दोबारा अपनी अनदेखी सूरत से पर्दा हटा दिया है और अपने लोगों पर खुद को जाहिर कर दिया है, एक अजीम बादशाह जिसने अपने जलाल को अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे फिर न देखेगी, मैं उनके सामने से पर्दे में चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे इस वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा, सारे कलाम की तकमील के लिए। लूथर से वेस्ली तक तब्दील होते हुए, सिलसिला बा सिलसिला, जलाल से जलाल तक, मैं अब भी यक्षा खुदा हूँ जो जिंदा था और वापिस अपने असल जलाल में जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने हर एक तंजीमी पर्दे को चाक कर दिया है, हर एक आवाज की रुकावट को भी, वो आवाज जो कहती है ओ ये मजहबी जोशो जज्बा है, उसने उसे तोड़ दिया है। वो आवाज जो वहाँ से आती थी, कहा ओ ये लोग पागल हैं, उसने बिल्कुल ठीक पर्दे को चाक किया है। जी हाँ, उसने ऐसे किया। ओ, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ मुतहस्सब ग्रोह के सिवा कुछ भी नहीं है। उसने उसे तोड़ दिया कि इलाही शिफा जैसी कोई चीज नहीं, उसने इस बात को ठीक खत्म कर दिया। ओ मेरे खुदाया, चूँकि उसका कलाम फरमाता है वो ऐसा करेगा, आप खुदा के कलाम को फतह नहीं कर सकते। आज रात भी वो ताकतवर फाते अभी तक वहीं खड़ा है, क्योंकि उसने हर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और हर किस्म के पर्दा को चाक कर दिया है। वो अब भी आज रात अपने लोगों के दरमियान खड़ा है ताकि रसूमात को शिकस्त दे, लोगों को कहने दें जो वो कहना चाहते हैं, करने दें जो वो करना चाहते हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं। उस आवाज की रुकावट को तोड़ते हुए खुदा आता है। और याद रखें, वो मुझे बताते हैं जब एक जहाज सचमुच उस आवाज की रुकावट को चीरता है तो उसकी रफ्तार की कोई हद नहीं रहती। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप उस रस्मी रुकावट को तोड़ देते हैं तो यीशु ही वापसी का रास्ता है। और क्या वो अब नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि वो कल, आज और अब तक यक्षा है, उसकी कोई हद नहीं है। खुदा इस कन्वेंशन में यहाँ क्या कर सकता है और दुनिया को दिखाए जिसकी उन्हें जरूरत है, ना कि दुनिया का मेला मगर दुनिया की बेदारी, जो कि जिंदा खुदा की हजूरी और बपतिस्मे से भर दे। पोशीदा खुदा खुद इंसानी जिस्म के पर्दे में छुपा हुआ है। हालेलुया, मैं इसका यकीन करता हूँ। हर एक रुकावट, हर पर्दा चाक कर दिया गया है, कुछ भी उसकी हजूरी से छुप नहीं सकता। जब लोग दिली तौर से उसकी भूख रखते हैं तो ये पर्दा चाक होने के लिए तैयार हो जाता है। आप सिर्फ उसी पर भरोसा रखें, उसके अजीम पाक रूह से हर एक पर्दा चाक कीजिए। आज रात वो ताकतवर फाते यहाँ खड़ा है, जो कल, आज, बल्कि अब तक यक्षा है, बीमारों को शिफा देने वाला, ईमानदारों को बपतिस्मा देने वाला, जिस तरह उसने हमेशा से किया, वो ताकतवर फाते है। बदबख्त अब्लीस भाग रहे हैं। जी हाँ जनाब, वो हमेशा ही भाग जाते हैं जब वो यहाँ मौजूद होता है। खत्म करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक बूढ़े सरंगी नवाज के मुतालिक। उसके पास एक पुरानी सरंगी थी, वो उसे फरोख्त करने जा रहा था। आपने ये कहानी बहुत मर्तबा सुनी है। वो उसे एक खास चीज की खातिर फरोख्त करना चाहता था और नीलाम करने वाले ने कहा, कौन मुझे फला फला कीमत देगा? मुझे यकीन है उसे चंद सिक्कों की पेशकश हुई होगी, हो सकता है 50 सेंट या वगैरह वगैरह। एक बार फिर कहा गया, दूसरी बार फिर कहा गया। बराह रास्त पीछे से एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा एक मिनट। वो चलकर वहाँ आया और उसे ले लिया। चलें, ऐसा ख्याल करते हैं उसने ये बजाया, एक चश्मा जो के लहू से भरा है, वो इमैनुअल की नसों से निकला है। जब गुनाहगार उस लहू में डूब जाते हैं तो उनके गुनाह के धब्बे मिट जाते हैं। फिर जब उस सरंगी को नीचे रख दिया गया तो उस जगह हर आंख अश्कबार थी। तब उसने कहा, कौन कीमत लगाएगा? एक ने कहा 5,000, 10,000। ये अनमोल बात थी। क्यों? इसलिए कि उस बूढ़े सरंगी के मालिक ने सरंगी की असल खूबी को जाहिर कर दिया था। ओ भाइयों और बहनों, अब हम इस कलाम के मालिक को मौका दें जिसने इसे लिखा है, वो अजीम रूह पाक जिसने अपनी कमान को मोहब्बत से उठाया है और आपके दिलों के आर पार इसे खींच दिया है। एक चश्मा जो लहू से भरा है, इमैनुअल की नसों से निकला है। आप उसकी पूरी कीमत को देखें और आशकारा खुदा को बिल्कुल नजर आने वाले की तरह देखें, जैसा कि वो बिल्कुल यक्षा है, जिस तरह वो पेंतिकोस के दिन लोगों पर आ ठहरा जब उसने खुद को उनके अंदर उंडेल दिया। ये दुरुस्त है। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं कोशिश कर चुका हूँ, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। एक दिन मेरी कार्लस बेड न्यू मैक्सिको में एक इबादत थी और हम वहाँ नीचे पुरानी चमगादड़ों की मांद में चले गए और ये एक किस्म के भूत घर की तरह नजर आ रही थी और हम वहाँ गए। और वो आदमी जब वहाँ नीचे उतर गया उस जगह में उसने झपट कर बत्तियाँ बंद कर दी। ओ मेरे खुदाया, आप तस्वीर नहीं कर सकते कि ये कितना अंधेरा था। ये इतना ज्यादा अंधेरा था कि आप उसे महसूस कर सकते थे। ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे कि दिन आ रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि कलीसिया खुदा के कलाम को पहचानने में नाकाम है। जब आप देखते हैं कि हमारी सायुन की बेटियां उस तरीके कार पर अमल करती हैं जिस पर वो चल रही हैं, जब आप हमारे भाइयों को शराब और सिगरेट पीते देखते हैं और गंदे लतीफे सुनाते हुए और गंदी बातें करते हुए और फिर भी अभी तक कोशिश में लगे हुए हैं कि मसीह में अपना इकरार कायम रखें, ओ मेरे खुदाया, ये कितना अंधेरा है। ये तो खौफनाक अंधेरा है। हम उसकी आमद की निशानी को देखते हैं, ऐसा ही है। दिन निकलने से पहले हमेशा ही अंधेरा होता है, फिर सुबह का सितारा नमूदार होता है दिन को सलाम पेश करने के लिए और इसका ऐलान करने के लिए, ये जाहिर करते हुए कि वो आ रहा है। गौर करें, वहाँ अंदर जब उन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी, एक छोटी लड़की अपनी बुलंद आवाज से चला उठी और एक छोटा लड़का भी वहाँ पर गार्ड के साथ खड़ा था और उसने उस गार्ड को देखा जब उसने वो बत्तियाँ बंद की थी। और वो छोटी बहन तकरीबन बेहोश होने को थी और ऊपर नीचे छलांगे लगा रही थी। ओ, आगे क्या होने को है, मसला क्या है, मसला क्या है, आप जानते हैं। गार्ड ने उससे कहा, उसने कहा, खौफ मत खाओ छोटी बहन, एक शख्स यहाँ है जो बत्तियाँ जला सकता है। सुनिए प्यारी बहन, शायद आप सोचती हो कि हम थोड़े से हैं, मगर खौफ ज्यादा ना हो, यहाँ एक ऐसा शख्स भी है जो बत्तियाँ जला सकता है और वो रूल कुछ है। क्या आप इसका यकीन करेंगे? आए हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको रोके रखा। है आसमान के अजीम खुदा, खुद को आशकारा करने वाले, खुद को आया करने वाले, खुद को जाहिर करने वाले जलाल के अजीम बादशाह, आज की रात इन छोटी तमसीलों को ले ले और इन्हें लोगों के दिलों पर गिरने दे। हो सके तो हम उस आशकारा को देख सकें जो नीचे उतर कर आया और हैकल के पर्दा को चाक कर दिया और फिर बिल्कुल पर्दे से बाहर निकलकर पेंतिकोस के दिन पर दोबारा इंसानी पर्दे के अंदर आ गया। वो हमेशा से यकसा है, जलाल से जलाल में तब्दील होते हुए। और अब हम बिल्कुल वापस आते हैं जिस तरह तमाम कुदरत अमल करती है, वापस बिल्कुल असल बीज की जानिब आते हैं, बिल्कुल एक कलीसिया के दौर से दूसरी कलीसिया के दौर में। और इस आखिरी दौर में हम यहाँ हैं, बिल्कुल असल चीज की जानिब वापस जाना है जो पेंतिकोस के दिन पर नाजल हुई, कलाम की हर आयत को पूरा होना है, यानी शाम के वक्त रोशनी। और वो काम जो मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे और बहुत सारी बातें जिसका तूने अपने कलाम में वादा किया है। ए बाप, अगर कोई है जिसने अभी तक पर्दे को चाक नहीं किया, या अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने किसी शख्स की नकल की हो जो पर्दे के अंदर से होकर आया हो, ए बाप, आज रात अपना फजल अता कर ये कादरे मुतलिक फाते को यहाँ पर खड़े हुए देख सकें जो फजल और कुदरत से मामूर होकर माफ करने वाला है। ए बाप, ये बख्श दे। और जबकि हमारे सर झुके हुए हैं, क्या कोई यहाँ पर मौजूद है, कितने हैं? मैं कह सकता हूँ जो कहें, भाई ब्रैनम, मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, अपना सर झुकाए रखें और अपना हाथ उठाएं। मैं हर एक पर्दे को चाक करना चाहता हूँ जब तक मैं सचमुच फाते को साफ ना देख सकूँ। खुदा आपको बरकत दे, कहें मेरे हाथों को थाम ले, बिल्कुल ऊपर बालकनियों में, क्या ऊपर बालकनियों में, ठीक है, खुदा आपको बरकत दे, बालकनियों में पीछे क्या है, उठें, खुदा आपको बरकत दे, दयानतदार रहें। बाएं जानिब से क्या कोई है, अपना हाथ उठाएं, कहें, भाई ब्रैनम, मैं सालों से एक मसीही रहा हूँ लेकिन असल में कभी भी उस पर्दे में से होकर नहीं गुजरा, मैंने दर हकीकत ये कभी नहीं किया, मैंने वो कभी नहीं पाया वो जो उन्हें तब मिला था, आज हमें मिल गया। मैं एक गर्म क्यारी में बोया गया पौधा हूँ, एक ऐसा फूल लें जो गर्म क्यारी में बोया जाता है, आपको उसकी देखभाल करनी है, उसे पालना है, उसे पानी लगाना है और स्प्रे करना है, लेकिन वो असल पौधा जो उधर बाहर रेगिस्तान में उगा हो, बिल्कुल उसी किस्म का फूल, उसी किस्म का नजर आता है, उसे थोड़ा भी पानी नहीं मिला लेकिन उस पर कीड़ा भी नहीं, ये उम्दा किस्म है, ये असली है। क्या आप उस मसीहत का आज की मसीहत से मुवाजना कर सकते हैं? तब वो किस तरह की थी? क्या आप इस ग्रोह का तस्वीर कर सकते हैं जिन्हें हम दुनिया भर में मसीही कहते हैं, उनके साथ जो पेंतिकोस के दिन थे, शीरखार और थपकी देने वाले और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, और कुछ कहना आप पसंद नहीं करते, उठें और बाहर चलें, और ओ, क्या आप ये तस्वीर कर सकते हैं? नहीं, क्या मसला है, ये असल नहीं है। माइकल एंजलो जिसने मूसा की यादगार बनाने की कोशिश की, आप उसकी नकल बड़ी सस्ती हासिल कर सकते हैं, मगर असल नहीं। वो शख्स जिसने खुदावंद की अशायरा बानी वाली तस्वीर बनाई, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर आप उसे खरीदते तो वो असल तस्वीर लाखों डॉलर में मिलती। मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है, मगर आप उसकी नकल सस्ती तकरीबन $1.98 में खरीद सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही आज है। एक सस्ता मसीही एक नकल है, सिर्फ एक कलीसिया में शामिल होने वाला। आप इसे बाहर ही खरीद सकते हैं, एक सिगरेट देकर या एक शराब की बोतल देकर। या एक कटे हुए बालों वाली औरत या होंठों पर सुर्खी लगी हुई औरत, आप उसे दुनिया के किसी भी फैशन के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल असल को छू भी नहीं सकते। मैं उसे पूरी तरह से देखता हूँ कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो मसीहो, तुम क्यों असल मसीही नहीं बनते? अगर कोई है तो तुमने अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं उठाया? क्या आप ऐसा करोगे? ठीक है, मैं अभी दुआ कर रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। हो, यही अच्छा है, सिर्फ इसी पर निगाह रखें। हमारे आसमानी बाप, तेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं आता। खुदावंद, तू ही वो है जिसने वादा किया। मैं तो सिर्फ ये कहने का जुम्मेदार हूँ, मैं सिर्फ तेरे अल्फाज दोहरा रहा हूँ। तूने फरमाया, वो जो मेरे कलाम को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। तूने इसका वादा किया है। खुदावंद, हम जानते हैं कि आज भी इनके पास बहुत से नकाल हैं, बहुत से जो कहते हैं कि वो यकीन रखते हैं जबकि वो यकीन नहीं रखते। ये दिखावा है, लेकिन खुदावंद, यहाँ कुछ असल भी हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तू अता कर कि आज रात यहाँ हर मर्द और औरत, लड़का और लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कौम से हैं, किस रंग के हैं, वो किस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। ऐ खुदा, उनको बर दे, वो आज बिल्कुल उसी यसू को असल जहूर में देख सके जो बिल्कुल हमारे दरमियान मौजूद है, जैसे वो पेंतीकोस के दिन पर था जब उसने खुद को इस जमाने के लिए रूल कुछ के तौर पर जाहिर किया। बख्श दे कलाम को पूरा होते हुए और नबूवतें पूरी होती हुई लोग देखें। क्या आज हम मुवाजना करते हैं दुनिया की कलीसिया का, जो वो कहते हैं, यानी कलीसियों की आलमी कौंसिल, क्या हम उसका पेंतीकोस के वादे के साथ मुवाजना कर सकते हैं? बिल्कुल मुवाजना नहीं कर सकते। इस टिकट पर अपने गंदे कपड़े नहीं दिलवा सकते। लेकिन खुदावंद खुदा, अगर हम वापिस उस चश्मा पर आ जाएं, तो वहाँ एक धुलाई का तरीकेकार जारी है। तब हमारा तजर्बा और खुदा का कलाम एक दूसरे से इत्तफाक करेंगे, फिर हम अपनी मलकियत का दावा कर सकते हैं। खुदावन, आज रात ये अता फरमा, जैसे मैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप, हम में से हर एक को हमारी जरूरत के मुताबिक बख्श दे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। खड़े होने के लिए और देर तक इंतजार करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको 10:10 तक रोके रखा। खुदा आपके साथ हो, और मैं आपको सुबह मिलूंगा। अब मुझे इबादत का रुख मेरे ख्याल में इबादत के उस मालिक की जानिब मोड़ना चाहिए।